ओम शांति। कुछ ही देर में आज का हम उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम शुरू करेंगे, परंतु उससे पहले हमारे बीच में भ्राता हरीश मोयल जी हैं, और क्योंकि उनको अभी रिसेंटली निकलना ही है, तो इसीलिए मैं उनसे ज़रूर अनुरोध करूंगी कि सुंदर सा एक बाबा का गीत हम सभी के बीच में रखेंगे। तो भ्राता हरीश मोयल जी, जिनको हम सभी ने कल भी सुना है और उनका परिचय हम सभी जानते हैं, तो अभी मैं उनको जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ सम्मान, कि वो सुंदर सा एक गीत बाबा का याद का और हम सभी परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आप सब आए हैं, आपका बहुत स्वागत। जो नहीं आए हैं उनका डबल स्वागत। ये खास गाना मैंने आज के लिए चुना था, लेकिन ऐसा है कि सिर्फ कहते हैं ना, सतयुग में थोड़े ही लोग होंगे, तो ये हमारा छोटा सा सतयुग है। तो ये गाना आज पहली बार मैं स्टेज से गा रहा हूँ, हमारे ORC के रवि भाई ने लिखा है। और थोड़ा सा कम कर दीजिए भाई जी इसको। तो आज खास जो मेहमान आए हैं आपके लिए, इस गाने का इनॉग्रेशन समझिए, आपके लिए तो इतने खास प्रोग्राम का भी इनॉग्रेशन है, तो बहुत स्वागत एक बार फिर से। तो पहली बार गा रहा हूँ, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा।
प्रभु तेरा हुआ इस बार, मेरा जीवन मेरा नहीं, प्रभु तेरा हुआ इस बार। पाकर तुमको पूरा हुआ है, पाकर तुमको पूरा हुआ है मेरा ये संसार। मेरा जीवन मेरा नहीं, प्रभु तेरा हुआ इस बार। तेरी है पूजा मेरी, महिमा भजन बनाऊं, दिल में बसी है मूरत तेरी, और मैं किसे बसाऊं, और मैं किसको बसाऊं। तेरा हूँ बस तेरा रहूँगा, अब क्या करूँ विचार। मेरा जीवन मेरा नहीं, प्रभु तेरा हुआ इस बार। शांत रहूं या बात करूं, समझ न मुझको आए, तुझसे मन शांति पाए, संग बातें करता जाए। सामने तू है साथ में तू है, सामने तू है साथ में तू है, ही है सुख का मेरा जीवन मेरा नहीं प्रभु तेरा हुआ इस बार पाकर तुझको पूरा हुआ है पाकर तुझको पूरा हुआ है मेरा ये संसार मेरा जीवन मेरा नहीं प्रभु तेरा हुआ इस बार हो तेरा हुआ इस बार प्रभु तेरा हुआ इस बार।
तो बहुत स्वागत आपका बहुत शुक्रिया। और कहते हैं भगवान को जब हम समर्पण करते हैं तो हमने जो लिया था वही दिया है, हमारा कुछ नहीं है। तो ऐसी भावना से हमारे रवि भाई जो ORC में आपको मिलेंगे, उन्होंने गाना लिखा है और बाबा ने मुझसे कंपोज कराया। तो आप ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनते रहें। बहुत सारे गाने यज्ञ के हैं जो लोगों को हील करते हैं, ऐसा बोला जाता है। भारत में जब संगीत शुरू हुआ था तो सिर्फ भगवान के लिए गाया जाता था, फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कोई म्यूजिक को कोठों में लेके गया, कोई एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया। लेकिन जो हमारी पुरातन सभ्यता है जिसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां पे सिर्फ म्यूजिक उस ईश्वर के लिए। इसीलिए कहते हैं ईश्वर तक पहुंचने की सबसे सरल सीढ़ी संगीत है। तो आप ऐसे संगीत को प्रमोट करें, आप जितने भी लोग आए हैं ये म्यूजिक लोगों को पहुंचाएं। दुनिया में बहुत दुख दर्द तकलीफ है, तो इस म्यूजिक से उनके मन को शांति मिलेगी और भेजने वाले को दुआएं मिलेगी। शुक्रिया, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता हरीश मोयल जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहिए और ऐसे ही सबके बीच में सबको प्रभु की याद दिलाते रहिए। ओम शांति। आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का इस मंच पर आह्वान करते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और मैं अपने सभी वरिष्ठ राजयोगी और जो भी गेस्ट हमारे बीच में आए हैं उनको ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। कृपया आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय पूनम दीदी जी, दिल्ली से आप हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, भ्राता नीरज गुप्ता जी, भ्राता धर्मेंद्र गुप्ता जी, बीके मोनिका पटेल जी, बीके तृप्ति बहन जी, ब्रदर राजेश जैश जी, आदरणीय परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, बीके सतीश भाई जी, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी प्रभु स्मृति में इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। हम सब परमात्मा की याद में 3 मिनट के लिए बैठेंगे।
वही जो भला करे साथ ले सबको चला करे,
भला वही जो भला करे साथ ले सबको चला करे,
भला वही जो भला करे
सबके मन में,
हर आंगन में
दिव्य ज्योति बन जला करे, दिव्य ज्योति बन जला करे।
कला वही
जो भला करे।
सत्यम शिवम सुंदरम है ये, मंगल मधुर मनोरम है ये,
सत्यम शिवम सुंदरम है ये, मंगल मधुर मनोरम है ये,
राग रंग रस का संगम है, अतींद्रिय अनुभव अनुपम है।
प्रभु प्यार में पला करे,
कला वही जो भला करे,
कला वही जो भला करे।
ओम शांति। आप सभी भाई बहनों से सर्वप्रथम मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप जो पीछे पीछे और दूर दूर बैठे हैं, कृपया आप आगे के स्थान को फुलफिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप लोगों के साथ जो भी भाई बहने आए हैं, आप उनको फोन करके बुला सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैंपस में ही हैं और इतनी अच्छी प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उनको बोलिएगा कि जो आनंद आज यहाँ आने वाला है वो आप प्रकृति का थोड़े समय के बाद भी ले सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अभी हॉल में जल्दी से जल्दी सभी पहुँचें। तो आप बेशक फ़ोन करके उनको बुला सकते हैं, ऐसा मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है। और अभी आज के सुंदर राष्ट्रीय सम्मेलन राजयोग मेडिटेशन शिविर जो हमारा चल रहा है, उसका आज उद्घाटन सत्र है। इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय वक्तागणों के स्वागत के लिए बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वो कृपया आएं और बैजेस और बुके के द्वारा, फूलों के द्वारा हमारे सम्माननीय मंच के सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर आज का दिन है, खुशियां नगमे बिखेर रहे हैं, खुशियां नगमे बिखेर रहे हैं, दबे दबे पांव कुछ कह रहे हैं, दबे दबे पांव कुछ कह रहे हैं, आज का दिन कुछ खास है, आज का दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं। तो जोरदार हम सभी तालियों के साथ इस स्वागत में शामिल होंगे, क्योंकि ये स्वागत सिर्फ मंच वालों का नहीं है लेकिन आपका भी है। तो इसीलिए आप अपनी तालियों के साथ, अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और अपनी भावनाओं के साथ इस स्वागत में बने रहिएगा। और अभी आमंत्रित करने जा रही हूँ मधुर वाणी ग्रुप, जो कि बहुत सुंदर गीत हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं, भ्राता सतीश भाई जी, नितिन भाई जी, मिनेश भाई जी और भानु भाई जी।
ओम शांति। एक बार फिर से सात स्वर कहें, ओम शांति, ओम शांति। फिर सजा है ज्ञान सरोवर, सजा दिव्य दरबार, दिव्य मानो रचनाकारों, स्वागत सौ सौ बार, कला संस्कृति का सम्मेलन सुंदर ये संसार। हे प्रभु प्रिय कलाकारों, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार। जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार करें।
कलाकार ने पाना है तो बदला सारा जमाना है। फिर कलाकारों को दिव्य मानव बनना बनाना है। स्वर्ग भी यह सुंदर है, आपका अपना घर है। को देखिए फिर आना यहाँ पर है। हे परमात्म प्रेमियों, हे परमात्म प्रेमियों, मेरा प्यारा प्रभु परिवार, स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। दिव्य दरबार, दिव्य मानव रचनाकारों, स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार, अभिनंदन बारंबार, स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। आप एक नहीं सौ सौ बार प्रयास करते हैं और हर प्रयास में सफल रहते हैं। प्रयास करना, कोशिश करना, कोशिश करना और कोशिश करना, ये आपकी सफलता का सूत्र है, जिससे आप हम सभी को बहुत ही स्पिरिचुअल तौर पर कनेक्ट भी करते हैं और हमारा एंटरटेन भी करते हैं। बहुत सुंदर स्वागत आप सभी का किया, हम सभी का किया। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है आपका। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ स्वागत के लिए अपनी आदरणीय पूनम दीदी जी को। आप शालीमार बाग नई दिल्ली से हैं। आप आध्यात्मिक सेवाओं में सदा सक्रिय रहती हैं। आप हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के दिल्ली के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली के भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही आप बहुत समय से, मैं समझती हूँ जब से कला संस्कृति प्रभाग बना है, तब से आदरणीय भाई साहब ने, रमेश भाई साहब ने आपको दिल्ली की सेवाओं का कलश आपको दिया है और तभी से आप इन सेवाओं को करते आ रहे हैं। आपने केवल दिल्ली ही नहीं लेकिन भारत और भारत से बाहर भी इन सेवाओं को फैलाया है। मानव के अंदर अपनी भारतीय संस्कृति और उसकी कला के प्रति जो जागृति है, उसको आपने उन लोगों के अंदर एक, जैसे कि कल भी हम सुन रहे थे कि एक परंपरा बन जाए, तो उस रूप से आपने वो लहर सबके अंदर फैलाई है। तो ऐसी विशेष परम आदरणीय दीदी जी जो कि बहुत ही सहज सरल उदारचित हैं, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ आज के स्वागत वक्तव्य के लिए। आदरणीय पूनम दीदी जी, हम जोरदार तालियों के साथ आपका भी स्वागत करते हैं।
ओम शांति। सब मिलकर के प्यार से इस ओम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सभी खुशी से बोलेंगे ओम शांति। आज का दिन उद्घाटन सत्र बहुत विशेष दिवस कला संस्कृति प्रभाग की सेवाओं के अंतर्गत ज्ञान सरोवर में जो शुरू हुआ है, उस विशेष दिन पर मुझ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा को आप सबके स्वागत करने का सौभाग्य प्रदान किया है। लेकिन उस सौभाग्य को प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम आज की इस सभा में निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा, जो परम कलाकार हैं और जिनकी सर्वश्रेष्ठ कृति दिव्य मानव है, कल से हम सुनते आ रहे हैं, उस हजूर को हाजिर देखते हुए, उनकी हाजिरी लगाते हुए सर्वप्रथम प्यारे शिव बाबा का सबकी ओर से, मंचासीन अतिथियों की ओर से, आप सबकी ओर से उनका तहे दिल से, खुले दिल से, बड़े दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। प्यारे परम पिता परमात्मा परम कलाकार का आज की इस सभा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि, विशेष रूप से आज की मुख्य अतिथि हमारे धर्मेंद्र गुप्ता जी, जो कि मुंबई से पधारे हैं, जो कि एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, जिनके नाम के अंदर ही उनकी विशेषता समाई हुई है कि वो धर्म कर्म के कार्यों की ओर अधिकता में रुचि रखते हैं। तो ऐसे विशेष अतिथि का, माननीय अतिथि का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की इस सभा के हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, जो कि हमारे विंग के चेयरपर्सन हैं, जिनके विषय में आपने कल भी सुना कि किस प्रकार से कला संस्कृति प्रभाग की सेवाओं को आपके निर्देशन में उमंग उत्साह के पंख मिल चुके हैं और उड़ रहा है ये प्रभाग ईश्वरीय सेवाओं में पूरे विश्व में। तो ऐसी हमारी विशेष आदरणीय प्रभु पिता को प्रत्यक्ष करने वाली, प्रभु पिता को अपने दिल में बिठाने वाली हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, जिनके लिए कहना चाहूंगी, चंद्रिका दीदी जी यज्ञ की शान, सरलता उनकी है पहचान, आओ करें उनका सम्मान। चाहूंगी कि आप एक बार अपने खड़े होकर के हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का सम्मान करेंगे। ऐसी विशेष दिव्य रूहानी मूर्ति का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो कि जॉइंट चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वो भी अभी हमारे मध्य पधारने वाले हैं, उनका भी अभी हम सब करेंगे स्वागत। उससे पूर्व हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता, उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, आप वाइस चांसलर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, मंच पर हैं शोभायमान, आबू की पावन भूमि पर ज्ञान सरोवर के परिसर में उनके अपने ही घर में बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत करना चाहूंगी मैं मुंबई से पधारे हुए बॉलीवुड एक्टर भ्राता राजेश जयेश जी का, जो कि हमारे एक बार के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपनी विशेष विशेषताओं को लेकर के हमारे बीच में पहुंचे हैं। ना सिर्फ आप एक एक्टर हैं, लेकिन आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है और शायद वो भी हम सबको सुनने को मिलेगी। तो विशेषताओं से भरपूर, जो कि है ही, जयेश नाम में ही उनकी विशेषता छिपी हुई है कि वो विजयी आत्मा है ही हैं, अपने फील्ड में सफलता को प्राप्त करने वाले भ्राता जयेश जी का, राजेश जयेश जी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की सभा में हमारी आदरणीय प्रेम बहन जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट कल्चर विंग के, कल भी आप सबने उनको सुना और आज भी सुनेंगे, ऐसे प्रेम से भरपूर हमारी प्रेम बहन जी, जो सचमुच यूनिवर्सल कल्चर का जो एक वैल्यू प्रेम की है, चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करती हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच में हमें परमात्मा से जोड़ लगाकर, कनेक्शन करके, संबंध जुड़वाकर, गुण और शक्तियां प्राप्त करवाने वाली, राजयोग की साधना में दिन रात कई वर्षों से अभ्यास में सेवारत हमारी तृप्ति बहन जी, जो कि गुजरात भावनगर से पधारे हैं। जब भी आप इस मंच से कला प्रेमियों को योग का अभ्यास करवाते हैं, तो सचमुच वो अनुभव के स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा अनुभव कराने वाली विशेष तृप्ति बहन जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत है, स्वागत है। तृप्ति बहन जी शायद अभी आएंगे, बैठे। और हमारे बहन मोनिका पटेल जी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, जो कि इस समय डबल पार्ट प्ले कर रही हैं, परम पिता परमात्मा परम कलाकार, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर हैं ही हैं, लेकिन इतने सारे कलाकारों के बीच में हमारी मोनिका पटेल जी का उस परम कलाकार ने सिलेक्शन किया है। जैसे कल आपने अंजलि अरोड़ा जी का एक्सपीरियंस सुना था, जो कि दिल को छूने वाला था, तो आज आप मोनिका पटेल जी का सुनेंगे, तो उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे आदरणीय जॉइंट चीफ सुदेश दीदी जी हम सबके मध्य पधार चुके हैं, बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो आपका स्वागत बैज और बुके से करेंगे। आदरणीय सुदेश दीदी जी को कौन नहीं पहचानता। मेरे ख्याल से सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, कम से कम जब आपको प्रोग्राम की बुकलेट मिली है और प्रोग्राम को आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले नजर गई होगी कि आज हम सबको आशीर्वाद देने कौन आ रहा है। गई सबकी नजर तो हाथ खड़ा करें, सबकी गई है। तो दीदी जी, आप सबके इंतजार में ये सब बैठे हुए थे और आप पधारे और आप प्रभु पिता की वो सर्वश्रेष्ठ कृति हैं जिनके गुणों का क्या गुणगान करूं, जिनके गुणगान स्वयं भगवान करता हो, तो हमारा करना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाती है। लेकिन आप देश विदेश में परम कलाकार शिव पिता की ध्वज लेकर क्रांतिकारी शांति के परिवर्तन कर रही हैं, विश्व में परिवर्तन ला रही हैं। आप उनके चेहरे से ही दर्शन कर रहे होंगे कि कितनी सौम्यता है, कितनी मुस्कुराहट है, कितनी रूहानियत है, कितना उनका प्यार नैनों से हम सब पर बरस रहा है। और आगे चलकर हम उनकी ब्लेसिंग लेंगे ऐसी विशेष महान हस्ती का तहे दिल से माननीय अतिथियों की ओर से, सब सभागार में उपस्थित भारत के भिन्न भिन्न कोने से पधारे हुए भिन्न भिन्न क्षेत्र के कलाकार जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन सब की ओर से मैं आदरणीय दीदी जी का बारंबार हृदय से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, वेलकम है। इसके साथ साथ हमारे दैवी भ्राता सतीश जी, जिन्होंने अभी अभी बड़ा सुंदर स्वागत गीत मधुर वाणी ग्रुप के साथ हमारे बीच में रखा और अंत में भी हमको कुछ सुनाएंगे, उनके साथ हमारी रचना बहन जी जो कि दिल्ली जोन से आर्ट कल्चर विंग की एक्टिव मेंबर हैं, स्टेज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो कल भी हमारे एक माननीय अतिथि जी ने सुनाया था कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो ऐसी रचना बहन का भी साथ साथ स्वागत करते हुए मैं अपने स्थान को ग्रहण करती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने वाले आदरणीय दीदी जी का, बहुत बहुत स्वागत है। तालियां थोड़ी कम बजी हैं, जोर से बजा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि परम आदरणीय सुदेश दीदी जी का स्वागत पुष्पों के द्वारा और बैचेस के द्वारा करेंगे। और हम सभी भी अपनी भावनाओं के साथ अपने प्यार से आपका बहुत बहुत आज के इस मंच पर स्वागत और आतिथ्य कर रहे हैं। आप हमारी बहुत ही वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ से वरिष्ठ। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। और अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपनी गुड विशेष के लिए आदरणीय प्रेम दीदी जी। आप करनाल से हमारे बीच में पधारे हैं। आप इस आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करनाल में आप अनेक सेवा केंद्रों का संचालन भी बहुत अच्छे से करते हैं और सबसे ज़्यादा तो आपके अंदर कला और संस्कृति प्रभाग के प्रति जो उमंग उत्साह है वो देखते ही बनता है। समय प्रति समय आप इस अलख को जगाकर आगे 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 और आगे हमेशा ही बढ़ते जाते हैं। कहा जाता है जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। तो ऐसे विशेष आदरणीय दीदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि आज के इस प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें अपनी गुड विशेष आदरणीय दीदी जी देंगे। हम सभी उनका स्वागत करते हैं।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। परम कलाकार, सर्वोच्च कलाकार, सर्वश्रेष्ठ कलाकार, परम पिता परमात्मा शिव निराकार की प्रिय संतान, आज के इस आर्ट एंड कल्चर विंग की कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन पर मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी सुदेश दीदी जी, जो कि जॉइंट चीफ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, आप आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन और यूथ विंग के भी चेयरपर्सन हैं, और अन्य सभी मंच पर उपस्थित सम्माननीय मेहमान और हमारे राजयोगी तपस्वी भाई और बहनें तथा सभा में उपस्थित आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनें, कलाकार भाई बहनें, जो कि भारत के कोने कोने से इस सुंदर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं और बहुत ही सुंदर विषय चुना गया है इस कॉन्फ्रेंस का, परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव। दिव्य मानव यानी देव मानव यानी देवता, देवता यानी कि देने वाला, देवता यानी कि दातापन की वृत्ति वाला, वही है दिव्य जिसमें सदा ही देने की वृत्ति है, देने की भावना है। परंतु जिस परम पिता परमात्मा परम कलाकार ने हम सभी दिव्य आत्माओं को दिव्य कलाकृति के रूप में हम सभी को घड़ा रचा, इस संसार में अपने जैसी इमेज में देने वाला और दाता स्वरूप में हम सभी को यहाँ पर भेजा, परंतु समय के अंतराल में हम सभी इस समय देख रहे हैं कि सभी देवता की बजाय क्या बन गए हैं, क्या बन गए हैं, देवता की बजाय लेवता बन गए हैं। कुछ न कुछ लेने की ही किसी न किसी से हर वक्त मनुष्यों की कामना रहती है, कोई मुझे रिगार्ड दे, रेस्पेक्ट दे, प्यार दे, सम्मान दे, मुझे पूछे, या कुछ न कुछ लेने का हाथ ऐसे ही रहता है। इसी वजह से आज वो दिव्यता गायब हो गई है और आपस में बजाय स्नेह और प्यार के, अपनेपन के, मिलनसार के, अपनत्व के बजाय आज आपस में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश इस संसार में जगह जगह पर लगा पड़ा है। क्योंकि एक तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक पिता परमात्मा की दिव्य रचना, एक परमात्मा के घर से आए हैं, आपस में हम सबका नाता भाई भाई अथवा भाई बहन का है, ये बेहद की बात को भूल जाने के कारण, संकीर्ण विचारधारा हो जाने के कारण, और फिर सदा ही एक दूसरे के से लेने की ही भावना रहने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसलिए आज के समय में इस बात को लेकर के कहा गया है कि आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, मतलब लेने की भावना, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, है डराता आदमी और डर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी और मर रहा है आदमी, देखो कितनी नादानी कर रहा है आदमी। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये सारी चीजें हमें संसार में देखने में आ रही हैं, परंतु यहां इस कॉन्फ्रेंस में हम सभी को ये स्मृति दिलाई जा रही है कि हम दिव्य आत्माएं हैं। ओरिजिनल हमारी दातापन की संस्कृति, जिसको दैवी संस्कृति कहा गया है, वो हमारी भारत की प्राचीन दैवी संस्कृति ही रही है। आज भी आप देखते हैं तो आप मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं की केवल चित्र हैं, केवल मॉडल्स हैं, वो चैतन्य चलते फिरते देवता नहीं, मॉडल्स भी आपको दे रहे हैं। इसलिए घर से दो मिनट के लिए भी भागते भागते मंदिर में जाते हैं कि देवताओं के दर्शन करके उनके नैनों के द्वारा प्यार, उनके फेस एक्सप्रेशन के द्वारा शांति, उनके मस्तक के द्वारा चिंता मुक्त आप होकर के आते हैं, सुख शांति और खुशी की अनुभूति करके आते हैं, उनके हस्तों के द्वारा भी वरदान मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहे हैं, है ना, तो उनके एक एक अंग जो है उनके द्वारा आपको प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो रही हैं। लेकिन आज अपनी उस मूल संस्कृति को, दैवी संस्कृति को भूलने के कारण हम इस कदर यहाँ पर पहुंच गए हैं, वो हम सब समझ सकते हैं। इसलिए किसी कलाकार ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप भी कलाकार हैं और मैं भी कलाकार हूं, आपने अनेक मूर्तियां रच करके, मेरे जैसी अनेक मूर्तियां रचकर इस संसार में भेजी हैं, और मैंने भी दिव्य मूर्तियां आप जैसी रच बना करके इस संसार में बेची हैं। लेकिन भगवान, शर्म उस समय बहुत आती है जब मेरी बनाई हुई मूर्तियां, यानी इस दुनिया वाले जो कलाकार हैं वो कहते हैं कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों के समक्ष लोग झुकते हैं, माथा टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं, रिगार्ड देते हैं उनको, लेकिन आपकी जो ये बनाई हुई दिव्य मूर्तियां हैं वो आपस में लड़ती हैं, चैतन्य मूर्तियां आपस में लड़ रही हैं, और आज के कलाकारों की बनाई हुई मूर्तियां उनके आगे लोग मस्तक झुका रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात के लिए जागृत होना चाहिए, सचेत होना चाहिए कि हमको, हम सभी कलाकारों को, यूं तो हम सब ही कलाकार हैं ना, इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी एक्टर हैं, ये वर्ल्ड ड्रामा है, हम सभी अपनी अपनी एक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी कला के अंदर हम सबको सात्विकता, शुद्धता, दिव्यता, पवित्रता और आध्यात्मिकता का समावेश करके जब हम दूसरों के सामने अपनी कला को परोसेंगे तो अवश्य ही दूसरी आत्माओं के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन उससे पहले तो अपने में दिव्यता भरना जरूरी है, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत ही सुंदर स्लोगन हम सब सुनते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यानी पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, फिर औरों का परिवर्तन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो आप सभी प्यारे शिव बाबा के घर में पधारे हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर जीवन में वैल्यूज को धारण करना और अपनी करेक्टर बिल्डिंग को हाई करना और स्वयं को मानव से देवत्व की ओर अग्रसर करना, जैसे कल हमारे परमादरणीय चंद्रिका दीदी जी ने हम सबको बहुत सुंदर ढंग से बताया था कि एक है देवता, दूसरे हैं मानव और तीसरे हैं दानव, तो तीन प्रकार की कैटेगरी हम सबके सामने रखी थी। तो अब परमपिता परमात्मा हम सभी से यही चाहते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि हम वही दिव्य मूर्तियां बने जैसी उन्होंने बनाकर हमें भेजा था, तभी हम सबके भी जीवन का लक्ष्य संपन्न होगा, संपूर्ण होगा, तो आप सभी आए हैं, तो मेरी शुभ भावना, शुभ कामना, दिल की दुआएं आप सभी कलाकार भाई बहनों के प्रति यही हैं कि आप आए हैं तो राजयोग मेडिटेशन जो यहाँ पर खास यहाँ की विशेषता है, मन को सकारात्मक दिशा देना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चैनलाइज करना, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक हम उन बातों को सुने जो सुबह का शिविर होता है, खासकर जरूर उसे भी अटेंड करें और दिन भर चलने वाले कार्यक्रमों को भी पूर्ण रूपेण अटेंड करें, और आए हैं अपना इतना समय निकाल करके तो अपने समय को और ही अमूल्य बना करके हम वापिस जाएं। धन्यवाद। ओम शांति।
ने आज इस कार्यक्रम के प्रति अपनी गुड विशेस दी, थैंक यू दीदी। और अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ बहन मोनिका पटेल जी। आप कलाकारा हैं और आपने अपने मुख्य अभिनय की जो शुरुआत की वो हिंदी फिल्म भारत इंडिया हिंदुस्तान 2000 से की, और उसके बाद ये कारवां चलता गया जो बिल्कुल भी थमा नहीं। बहुत सफल फिल्में आपकी एक्सक्यूज मी, टाइम पास, रिटर्न, वाह जिंदगी वाह, ऑपरेशन ग्रीन थंड आदि आदि रही। मोनिका पटेल जी मूल रूप से थिएटर की पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने दिल्ली और मुंबई में थिएटर में 20 साल से ज़्यादा समय बिताया है और दिल्ली आर्ट थिएटर रिपर्टरी का आप हिस्सा रही हैं, जहां आपने हिंदी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू में कई नाटक किए हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के लिए 15 से ज़्यादा नाटक आप लिख चुके हैं और निर्देशित भी आपने किए हैं। आपका ब्रह्मा कुमारी के 80 साल पूरे होने पर नाटक निर्देशित करने के लिए जाना जाता है, जबकि बॉलीवुड के 150 कलाकारों ने इस संगीतमय नाटक में हिस्सा लिया था और बहुत सुंदर वो परफॉर्मेंस रही। आपके द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत सुनहरे कल से सुनहरे पल नामक नाटक और सुपरहिट नाटक हैं नई सुबह की नई किरण, योग के पंख, शिव अवतार। तीनों नाटकों का विश्व स्तर पर सीधा प्रसारण किया गया है। वर्तमान समय भी आप फिल्मों में काम कर रहे हैं। एक न्यू वेब सीरीज आई है बोलती रूह, उसमें भी आपने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। तो ऐसी विशेष अदाकारा कलाकारा को आज के हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगी मोनिका पटेल जी। वेलकम।
ओम शांति। आवाज ही नहीं आ रही है, दो बार और बोलेंगे। ओम शांति, और जोर से ओम शांति। मंच पे उपस्थित आदरणीय सभी महारथी दीदी और भाइयों को मेरा प्रणाम, और जो बॉम्बे से जितने भी जो आर्टिस्ट आए हैं, जितने भी जो हमारे जो मेहमान हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत आभार। और परमात्मा के घर में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज से 13 साल पहले आर्ट एंड कल्चर विंग में जो है, मैं भी आप ही की तरह आई थी यहाँ पर। तो मुझे इस यज्ञ से जुड़े हुए, बाबा की बच्ची बने हुए 13 वर्ष मैंने पूरे किए हैं, और इस मंच के द्वारा आज मैं 3 लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दयाल भाई, आप अगर मुझे शिव अवतरण लिखने का अगर आप मौका नहीं देते तो शायद मेरी यहाँ से शुरुआत नहीं होती। और जो दूसरी हैं, जो हमारी कुसुम दीदी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, शायद अगर वो भी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत, जिसे बोलते हैं ना छोटे से बच्चे को उंगली पकड़कर उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उनकी मुझे इतनी पालना मिली है। हर कदम पर कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे करना है, कदम कदम पर मुझे उन्होंने पालना दी। और तीसरे हैं रमेश भाई जी, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ड्रामा तुमको ही लिखनी है। और उनका आदेश था, मैंने सर आंखों पर रखकर, और शिव बाबा ने करण करावन हार तो शिव बाबा है, और जो है उन्हीं के द्वारा जो है इतने सारे ड्रामा लिखे, बाबा ने ही करवाया। अब बात करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर अनुभव की बात करती है, जो मेरा अनुभव यहाँ पर कैसा रहा। तो हम भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, लेकिन जब तक हम उस परमात्मा को सही तरीके से जानेंगे नहीं तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई भी, जब आप किसी भी ब्राह्मण आत्मा से मिलते हैं तो आपको ये बोलते हैं कि आप 7 डेज का कोर्स करिए, क्यों कहा जाता है। तो जब मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब मैं भक्ति मार्ग के अंदर थी, एज आई वॉज अ कैंसर सर्वाइवर, मेरे को 4 स्टेज का कैंसर था 2009 के अंदर, तो उस वक्त भी मेरा भक्ति मार्ग बहुत स्ट्रांग था और मैं बचपन से शिव की भक्त थी। लेकिन परमात्मा कौन है, क्योंकि हमारे लिए तो सभी भगवान थे, कृष्ण भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, हनुमान भी भगवान है, गणपति भी भगवान है, सभी भगवान है। अब अगर रियल भगवान अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। और वही चीज मेरे साथ भी हुई थी, जब मेरा कैंसर जो है, जब मैं उससे बिल्कुल निकल गई, जब मेरी सारी रिपोर्ट जब मेरी नॉर्मल हुई, तो भक्ति मार्ग में भी मुझे बहुत साक्षात्कार हुए, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी मुझे बहुत साक्षात्कार हुए। तो जब मैं कैंसर से जब मैं निकल चुकी, तो मेरे को एक साक्षात्कार हुआ कि एक शिवलिंग है और शिवलिंग के अंदर एक ज्योत आई और वो ज्योत आकर जो है उसके अंदर समा गई। मैं तो बड़ी डर गई, मुझे लगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने सुना है कि ज्योति ज्योत समाया, तो मैंने बोला मोनिका पटेल अब तुम्हारा टाइम तो आ गया है टाटा बाय बाय करने का, अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अब ऊपर जाने का समय आ गया। तो कहने का मतलब ये है, बाबा हमको मुरलियों में, जब आप 7 डेज का कोर्स करेंगे तो बाबा हमको मुरलियों में कहता है कि अगर मैं रियल फॉर्म में अगर आपके सामने आ जाऊं तो आप मुझे पहचानोगे कैसे। वही हालत मेरी थी, क्योंकि मैं पहचान ही नहीं पाई कि वो शिव बाबा थे पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसकी जिसके अंदर श्रद्धा होती है मैं उसको उसी तरह का साक्षात्कार करवाता हूं। तो साक्षात्कार नहीं करना है हमको, हमको उससे कनेक्ट करना है। तो जब मैं इस यज्ञ से जुड़ू, बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, और अब मुझे कुछ उससे चाहिए होता है तो मैं मांगती नहीं हूं, अधिकार से कहती हूं, और उसको पूरा करना पड़ता है और वो पूरा भी करता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं सुनाऊंगी और उसके बाद मैं समापन करूंगी। आज से 3 महीने पहले जनवरी के अंदर मैं बाबा मिलन करने के लिए आई थी, और जब भी मैं बाबा मिलन करने के लिए आती हूँ तो मैं 2 दिन नीचे थी और 2 दिन मैं ऊपर आके ज्ञान सरोवर में मैं रुकी। तो मेरा ये नियम है, जब भी मैं ज्ञान सरोवर रुकती हूँ तो मैं अमृत वेला करने के लिए पांडव भवन जाती हूँ, ये मेरा नियम है। तो जब मैं आई जनवरी के अंदर आई थी तो मैं पांडव भवन गई अमृत वेला करने के लिए। आने से पहले मैंने जो है कुछ अपने टेस्ट करवाए थे जो मुझे करवाने होते हैं, तो मैंने सारा बॉडी चेकअप करवाया, उसके अंदर सब कुछ, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको हार्ट के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फिर ECG निकलवाया, तो ECG के अंदर भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो फिर कुछ आयुर्वेदिक मैंने मेडिसिन दवाई लेनी मैंने शुरू करी, उसके बाद फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रही थी मैं, तो डॉक्टर ने बोला कि 15-20 दिन आप पहले इसको लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। तो मैंने वो मेडिसिन लेना शुरू किया, तब तक मेरा यहां पर आना हुआ और मैं अमृत वेला करने के लिए गई। जब मैं अमृत वेला वहां पे कर रही थी बाबा की कुटिया के अंदर, तो मेरी चेस्ट में बहुत जोर से पेन हुआ। तो जैसे मेरी चेस्ट के अंदर पेन हुआ तो मेरा हाथ एकदम से, उनका बाबा, मेरे मुंह से निकला बाबा। आप यकीन कीजिए, उसके बाद मैं कहां गई मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरा हार्ट दिख रहा था और बाबा की लाइट दिख रही थी, मेरा हार्ट दिख रहा था और लाइट दिख रही थी। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई, वापस ECG करवाया, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, लेकिन मेरा दर्द खत्म नहीं हो रहा था, दर्द मेरे को फिर भी हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद तुमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी या गैस की प्रॉब्लम होगी, हम आपको मेडिसिन देते हैं। तो वो भी मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद भी मेरा दर्द नहीं जा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने लास्ट में मुझे बोला, जो मैंने आने से पहले ही करवाया था 15-20 दिन पहले, तो डॉक्टर ने बोला कि अब लास्ट एक ऑप्शन है कि 2D इको करवाएंगे, जिससे रिवील हो जाता है कि कितनी ब्लॉकेज है और क्या है, वो पता चल जाएगा। अब मेरा तो कोई नहीं है, पेरेंट्स की डेथ बचपन में हो गई है, तो ले देके मेरा तो शिव बाबा है, सारे रिश्ते मेरे उससे हैं। नेक्स्ट डे मेरे को अपना 2D इको करवाने के लिए जाना था। मैंने बाबा को बोला, इनका बाबा देख, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं अपनी ये ओपन हार्ट सर्जरी करवाऊं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, अब तू देख ले तुझे क्या करना है। ये मैंने बाबा को बोला, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपना 2D इको करवाने के लिए गई। रिपोर्ट वॉज एब्सोल्यूट नॉर्मल, और उसके बाद से मुझे कोई दर्द नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। ये है मेरे शिव बाबा का जादू, और उसका जादू जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ से जाए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप 7 डेज का कोर्स करो, तभी आपको अपने पिता के बारे में पता चलेगा और तभी आप उसकी शक्तियों को यूज कर पाओगे। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच।
बहुत ही सुंदर मैसेज मोनिका बहन ने दिया कि उस परम शक्ति को हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करें, और दवा के साथ दुआएं बहुत काम आती हैं। इतना सुंदर मैसेज आपने हमें दिया, और इसको हम सब अनुभव करते भी हैं और अनुभव करेंगे भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ कीनोट स्पीच के लिए हमारी परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, जिनको हमने कल शाम को भी उनकी ब्लेसिंग्स ली। आप इस पूरे ही कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, आर्ट एंड कल्चर विंग के आप चेयरपर्सन हैं, साथ ही यूथ विंग के भी आप चेयरपर्सन हैं। और अभी मैं आपसे नम्र निवेदन कर रही हूँ कि कीनोट स्पीच के लिए आप आमंत्रित हैं। आदरणीय दीदी जी के लिए हम यही कहेंगे कि संघर्षों में तपकर कुंदन बनी हैं, कांटों में आप फूलों से खिली हैं, अध्यात्म से निखरी मूरत हैं आप, सीरत से बहुत खूबसूरत हैं आप, खूबसूरत हैं और सबकी सीरत बदलने वाले हैं। तो ऐसी परम आदरणीय राजयोगिनी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का जोरदार तालियों के साथ हम भव्य मंच पर आमंत्रण करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस उद्घाटन सत्र में परम कलाकार परमात्मा का हम सभी ने आह्वान किया। आज के कार्यक्रम में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आदरणीय परम आदरणीय सुदेश दीदी जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं, और विशेष उद्घाटन के लिए गुजरात अहमदाबाद से पधारे हुए हमारे सम्माननीय उद्घाटक आदरणीय डॉक्टर निर्जा बहन जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत जोरदार तालियों से हम सभी अभिनंदन करते हैं। सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित सब मेरे दिव्य भाई बहने, जितना ऊंचा भाव और भावना के साथ ये विषय को पसंद किया है, परम कलाकार की श्रेष्ठ रचना दिव्य मानव, ये कार्यक्रम की योजना के पीछे यही भावना है कि मनुष्य में सोया हुआ देव मानव जागृत हो जाए और उस जागृत करने का परमपिता परमात्मा ने हम सभी के पर एक छोटा सा प्रयोग किया और आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को देखेंगे, ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को देखेंगे तो अध्यात्म जीवन और दिव्य गुणों की धारणा उन्होंने जीवन से आपको स्पष्ट नजर आएगी। परमात्मा ने ऐसी कौन सी मास्टर की दी जिस मास्टर की से यहां आने वाले राजयोगी तपस्वी भाई बहनों ने अपने देवत्व को पहचान लिया। मैं वो मास्टर की आप सभी को देना चाहती हूं। वाह, ताली बजाइए। परमात्मा ने एक बात कही कि ये इतने बड़े विश्व नाटक के अंदर हम देख भी सकते हैं, हम अनुभव भी कर सकते हैं और हमको मानना भी पड़ेगा कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के बराबर नहीं है, है? कोई भी अपने जैसा दूसरा एक इंसान ढूंढ सकता है? तो जब सत्य ये है कि कोई भी एक मानव दूसरे के जैसा नहीं है तो आज का मानव वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अपने को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है, दूसरों को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है, अपनी बीबी को दूसरे की बीबी के साथ, अपने बेटे को दूसरे बेटे के साथ, अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ी के साथ, है ना? कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, उस मानसिकता में 90% विचार शक्ति खत्म होती जा रही है। जब वो स्वयं को अपने से दूसरों से अपने को ऊंचा अनुभव करते हैं तो उसको अभिमान आ जाता है, नीचा अनुभव करते हैं तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और ये दोनों ही डेंजरस है क्योंकि मनुष्य में जो अहम है या हीनता है वो पतन का कारण है। मेरे भाई बहने, आप सभी अनुभवी होंगे कि ये बात 100% सच है कि सारा समय हमारा मन इसी बातों के चिंतन में रहता है। ये बात सही है तो जरा हाथ उठाइए, सही बात है? अब वो आपको सारा समय बहिर्मुख रखते हैं। यहां जो देव आत्मा है वो देव आत्मा नहीं रही। क्यों? क्योंकि दूसरों को देखते देखते परचिंतन आ गया, परचिंतन करते करते कमी और कमजोरियों का चिंतन आ गया, कमी और कमजोरियों का चिंतन करते खुद कभी कमजोरियों का संग्रह बन गए और जिसके कारण आज मानवी अपने आप को अवगुणों से भरा हुआ है ये एक्सेप्ट कर रहा है। केवल एक बात आज अपने आप से आप निश्चित कर लो, बाहरी रूप से तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन आंतरिक रूप से भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं है, हर एक का व्यक्तित्व अपना अपना है। तो मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा पास्ट में कोई हुआ नहीं है, भविष्य में कोई होने वाला नहीं है और वर्तमान में भी कोई है नहीं। तो भगवान की डायरी में मेरा नाम अलग से लिखा हुआ है और ठीक उसी प्रकार हरेक का नाम अलग से लिखा हुआ है। हरेक अपने आप के अंदर यूनिक है। अगर इतना चिंतन कर ले कि मैं यूनिक हूं मैं सबसे न्यारी हूँ, मेरा व्यक्तित्व अपना है और इस विश्व नाटक पर मेरा जो रोल है वो मैं ही बजा सकती हूँ। आपकी चिंतन की शक्ति इंट्रोवर्ट हो जाए, आप अंतरात्मा की गहराई में जाकर के, आप ये शरीर नहीं है जो देखने में आता है वो नहीं है, आप इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना है और ये चेतना अपने आप में पूर्ण स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। हर मनुष्य के अंदर आत्मा है और हर आत्मा अपने आदि स्वरूप में पूर्ण आत्मा है। बस इतना ही व्यक्ति को अनुभव हो जाए, रियलाइज हो जाए, महसूस हो जाए, तो वो इसी पुराने शरीर में अपने को एक दिव्य मानव समझ करके जीवन को दिव्य बना सकता है। तो हम कौन हैं? किसकी कलाकृति है? हम किसकी कलाकृति है? परमात्मा की है। परमात्मा की कलाकृति पूर्ण मानव है। परमात्मा की संतान आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो मनुष्य की देन है। तो मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। यहां पर इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इस बात को अपने साथ लेकर के जाएंगे। आप अपने पूर्ण देवत्व को अपने अंदर अनुभव करेंगे। 3 दिन आपके जीवन का ये गोल्डन टाइम है कि जब परमात्मा ने आपके पर स्पेशल आशीर्वाद किया है और आपको यहाँ बुलाया हुआ है। बस इतनी छोटी बात कह करके मैं अपने वक्तव्य को पूरा करना चाहती हूँ, परंतु आप जहां है वहां खड़े हुए और एक प्रतिज्ञा अपने आप से करें, खड़े हो जाइए। आप, मैं बोलूंगी, आप बाद में बोलेंगे। ओम शांति। आज मुझे ये वास्तविकता समझ में आई है, मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं, मेरे जैसा दूसरा इस संसार में कोई भी नहीं है और इसलिए मुझे अपनी तुलना किसी के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी सत्य मालूम चला है, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा की संतान होने के नाते मैं उनके जैसी हूं। वो ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। वो प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूं। वो आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप हूं। वो सुख के सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं। वो शांति के सागर है, मैं शांत स्वरूप हूं। वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति। आप सभी को अपने नए स्वरूप, नई समझ, नई महसूसता के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।
बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। दीदी का जब परिचय देने लगे तो कहा, रहने दीजिए, मैं सोच रही थी कि हमारी सभी वरिष्ठ जो कार्य करते हैं वो हिमालय जैसा है, लेकिन जब परिचय देने की बात आती है तो कहते तिनके जितना देना इससे ज्यादा नहीं देना। तो ऐसे नम्रचित ऐसे परम आदरणीय दीदी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो आपने अभी प्रतिज्ञा की है इसको आप ऐसे ही नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपको परमात्मा से जो प्रेरणा मिलती है और जब वो उसको शेयर करते हैं, आप जब इसको सच में रोज अपने जीवन के अंदर दोहराएंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि हमारे जीवन के अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन आ रहा है। तो इसको बहुत ध्यान पर रखिए। एक बार हम जोरदार तालियों के साथ दीदी का धन्यवाद करेंगे। और अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ डांस ग्रुप को, जो कि विले पार्ले से आया है, मुंबई से, कुमारी अर्पणा, कुमारी नंदिता और कुमारी पूजा। ये सुंदर वेलकम डांस, कथक डांस हमारे बीच में प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आपका भी हम मंच पर बहुत प्यार से स्नेह से स्वागत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही सुंदर नृत्य के द्वारा आपने सभी का स्वागत किया और आपका भी स्वागत आदरणीय सुदेश दीदी जी करना चाह रहे हैं सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के प्रति। कैंडल लाइटिंग हमारे बीच में दीप प्रज्वलन करके हम आज के इस इनॉग्रल सेशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और कुछ विशेष अतिथियों को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। वैसे तो सत्य बात ये है कि हम सभी विशेष हैं, जैसा कि दीदी ने बताया, और ऐसा दिल करता है कि आप सबको ऊपर बुला लें कैंडल लाइटिंग के लिए, लेकिन समय स्थान की सीमा होते हुए मैं आपके बिहाफ पे कुछ लोगों को आमंत्रित कर रही हूँ। कृपया आप आए और दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो ऊपर जो दीप है उस पर हमारे सभी मंचासीन सम्माननीय अतिथि आएंगे और जो नीचे दीप प्रज्वलन के लिए रखे हैं उसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल, हर्ष ढींगरा जी, ऋषिकेश चूरी जी, अंजलि अरोरा, विजेंद्र चौधरी दिल्ली से, दिनेश कुमार शर्मा नागपुर से, सुशील शर्मा जी करनाल से, अरविंद शर्मा करनाल, डॉक्टर आलोक शुक्ला जी रीवा से, डॉक्टर हरविंदर मंकर शालीमार बाग से, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव मुंबई, कमल नुतानी जी मुंबई, कुमारी पल्लवी महंत पुणे दुबई, कुश पेंकर महादेव नगर, मधु नुतानी मुंबई, मनीष तेरान डायरेक्टर हैं आप भी मुंबई से, मुकेश कपानी जी, नरेश बराना जी, आप सब नीचे आएंगे, प्रभाकर जी, प्रभांशु जी, राजेंद्र जी, मन बोडाना मिश्रा जी, राजेश सिंगरा जी, स्वाति बेन देवे, डॉक्टर शील कौशिक और कुश बैंकर, बीके दयाल भाई जी, तपस्वी बहन, बीके अनिल, बीके संजय भाई, बीके विद्या गोखले जी, बीके पारुल बहन, बीके कुंदा बहन, राधा बहन, बीके नरेंद्र भाई, बीके दिनेश भाई, गायकवाड भाई जी, शुभ्रा बहन, दिलीप भाई और सुनैना बहन, आप कृपया नीचे दृढ़ नि बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने अपने फोन की लाइट जलाई है, आप और सब भी जला सकते हैं। बहुत सुंदर ये दृश्य लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये जो आज यहाँ से आरंभ हुआ है कि परमात्मा जिसने मनुष्य को दिव्य मानव बनाया था, बहुत जल्दी हम सब दिव्य मानव बनकर कर नई सतयुगी दुनिया में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और अभी जिस घड़ी का हमको इंतजार था, हम सभी बहुत ही प्यार से सभी को सुन रहे हैं। और जो भी भाई बहने बैठे हैं, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप कृपया बीच में आए और सही से सारा स्थान ग्रहण करें। अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी। आपका मैं कुछ परिचय आपका काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी सागर को गागर में पिरोने के लिए। आप वर्तमान में गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद, गुजरात भारत की कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। पूर्व में सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में आपने सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। प्रिंसिपल के रूप में आपने गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में विदेशी अध्ययन विभाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप इंग्लिश में डायरेक्टरेट की डिग्री से सम्मानित हैं। 29 वर्षों का शैक्षणिक शोध और प्रशासनिक अनुभव आपको है। आप इस पर तालियां बजा सकते हैं, कोई छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है। 9 भाषाएं और 2 विदेशी भाषाएं, रूस और ग्रीक में कुशल ज्ञान से आप परिपूर्ण हैं। आपने 24 पुस्तकें लिखी हैं। आप अगर एक पुस्तक लिखने बैठे तो सोचना पड़ेगा। आपने 24 पुस्तकें लिखी हैं, विभिन्न विषयों पर शोध पत्र, जनरल, सम्मेलन, लेख पुस्तक, अध्याय पुस्तक, आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आपके मार्गदर्शन में 29 छात्रों ने सफलतापूर्वक अपनी PhD पूरी की है। आपकी जो रुचि है वो अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, गुजराती, हिंदी, भारतीय काव्य, इंडोलॉजी, प्राचीन हिंदू संस्कृति, प्रवासी और प्रवासन अध्ययन, साथ ही गांधीवादी विचार, भारतीय संस्कृति, और आप आस्था, प्रवासी कला और संगीत के भी प्रेमी हैं। आपने शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोधकर्ता के रूप में आपने देश और बाहर में भी अनेक शोध सहयोग किए हैं। आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की सदस्य हैं और साथ ही AICTE की इनोवेशन सेंटर की आप चेयरपर्सन भी हैं। आप कई प्रेस्टीजियस अवार्ड से सम्मानित हैं, जैसे कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, लंदन अचीवमेंट अवार्ड फॉर एजुकेशन एंड लिटरेचर 2025, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल इलियोइंस USA चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। तो मैं आपको, और साथ ही एक बहुत अच्छी चीज है कि जो भी G20 हुआ था तो आपके थीम पेपर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 जनवरी को मन की बात में प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी के हिस्से के रूप में विशेष उल्लेख किया है। तो इतनी सारी प्रतिभा की आप धनी हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, जोरदार तालियां कृपया बजाएंगे।
ओम शांति। सादर वंदन परम आदरणीय सुदेश दीदी, परम आदरणीय चंद्रिका दीदी, इस व्यासपीठ पर आज विराजमान अत्यंत सुशोभित महानुभाव, आप सबको मेरा सादर वंदन, और इस प्रांगण में उपस्थित आप सब प्रतिभागियों को भी मेरा सादर वंदन। ईश्वर की अनुकंपा और बड़ों के आशीर्वाद से ही ऐसे पल आते हैं जब हम अपने ऑफिस से निकलकर किसी ऐसी जगह आते हैं जहां पुण्य आत्माओं से आपका साक्षात्कार होता है। मैं हमेशा इस बात को मानती हूं कि कुछ एनर्जीज हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं, और उसी एनर्जी के कनेक्शन के स्वरूप आज मैं यहां उपस्थित हूं। मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूं कि आपने ये अवसर दिया। मैं दो बातों से आज की बात शुरू करूंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि विश्व की सारी समस्याओं का हल सिर्फ कला में है। आज 8 दिन हो गए और पूरा अहमदाबाद उदास है, और ये मैं कह नहीं रही हूं, ये मैं हकीकत बता रही हूं। हम जहां भी जाते हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, हमारी खुशी कहीं गुम हो गई है। वो खाली प्लेन नहीं था जो गिरा था, वो जीवन गिरा था। और मैं ऐसा मानती हूं, अब जो भी आए, जांच का रिजल्ट तो कुछ भी आएगा, वो कागज पे लिखने की बात है। मैं ऐसा मानती हूं कि वहां भाव खत्म हो गए थे, इसलिए ये दुर्घटना हुई। इंजन फेल कैसे हो सकता है? पेट्रोल का तापमान गर्म कैसे हो सकता है? मशीन काम करना बंद कैसे कर सकती है? यानी कहीं ना कहीं उस मशीन, उस यंत्र के साथ मेरा भाव टूट गया, तो मैंने उसकी देखरेख नहीं की, और क्योंकि भाव टूट गया इसलिए मशीन भी टूट गई। यतो हस्तो ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः, ऐसा कहा गया है। जहां हाथ है, अगर हमारी दृष्टि उससे अलग है, तो हाथ भी गलती करेगा और दृष्टि भी गलती करेगी। ये तो दृष्टि ततो मनः, जहां दृष्टि है वहां मन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो फिर दृष्टि भी गलत हो जाएगी और मन भी उससे विलग हो जाएगा। ये तो मनः ततो भावः, अगर मन और भाव एक होकर एक जगह नहीं है तो सब बिखर जाएगा। और यतो भावः ततो रसः, ऐसा कहा गया कि नाट्य में क्या होता है, कला में क्या होता है? तो अभिनव गुप्त इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो लोक में है वही नाट्य में है, जो संसार में है वही नाट्य में है, उससे बाहर नाट्य कुछ दिखा नहीं सकता। लेकिन फिर आगे भी कहते हैं एक चीज है जो लोक में नहीं है लेकिन नाट्य में है, और कहते हैं नाट्य ही रसः न तु लोकः, रस सिर्फ नाट्य में है, रस लोक में नहीं है। और इस बात का उदाहरण मैं कालिदास के एक छोटे से उदाहरण से दूंगी, लेकिन उससे पहले दूसरा उदाहरण। 4-5 दिन हुए इस दुर्घटना के, उसके बाद मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा अकेला जर्मनी में रहता है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है, माहू डर लगता रहता है। उस दिन भी ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा स्पीड बताओ, तो गुस्सा आ गया उसे, बोला नहीं बताऊंगा। मैंने कहा इसका पक्का मतलब है तुम तेज चला रहे हो। बोला तेज क्या होता है, आपके लिए तेज है, यहां नॉर्मल है। और वो थोड़ा गुस्से में बोला। मैंने कहा एक काम करना, जरा कांच नीचे कर और ये जो गुस्सा है इसको बाहर फेंक दे अपने हाईवे पे, और आराम से हंस के ड्राइव कर। बोला मैं गाड़ी चलाते हुए हाईवे पे कुछ नहीं फेंकता, मैं गंदगी नहीं करता। मैंने कहा डर मत, ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे तेरा हाईवे गंदा नहीं होगा। और वो हंस पड़ा। क्या हम हंसाना जानते हैं? क्या हम हंसना जानते हैं? क्या हम मन को शांत करना जानते हैं? कालिदास के उदाहरण की मैंने बात की, कालिदास जैसा कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। मैं आज भी जब थक जाती हूं, कहीं कोई प्रेशर है, कहीं कोई झगड़ा है, कहीं विद्यार्थियों का समूह है, कहीं नारेबाजी है, तो यकीन मानिए मेरी आज भी टेबल पर भी, घर पर भी और मेरे बेडसाइड पर भी समग्र कालिदास रखा हुआ है। मैं कोई भी पन्ना खोल के पढ़ने लग जाती हूं और सब भूल जाती हूं। कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका एक दृश्य है और दृश्य यह है कि शकुंतला की अभी अभी शादी हुई है, नव विवाहिता है, नवयौड़ा है और एक स्टेज है, स्टेज कण्व ऋषि का है, ऋषि का आश्रम जैसा होता है ऐसा ही स्टेज है, इधर कुटी है, इधर वन है, इधर कोई हिरन दौड़ रहे हैं, कमल खिले हैं, बड़ा सुंदर स्टेज है, बड़ा सुंदर कण्व आश्रम स्टेज पर सजा दिया है। उसके एक कोने में शकुंतला बैठी है और उस कोने में जो बैठी है तो हाथ में एक कलम की डंडी है, एक पत्र है और उस पे कुछ लिख रही है। दूसरी तरफ से एक एंट्री होती है और वो एंट्री हो रही है, दर्शक बैठे हैं सामने और ये दर्शक हर युग में बैठे हैं, जब से कालिदास ने ये नाटक लिखा है तब से ये नाटक दर्शक ही देखते हैं, वो दर्शक बदलते आए हैं, कालिदास का नाटक नहीं बदला। दर्शक बैठे हैं और एक एंट्री होती है, दर्शकों को पता नहीं कौन आया, कोई साधु वेश में आया है और वहां से आके कहता है, भो पुत्री नीराने, अरे पुत्री मुझे थोड़ा पानी दे दे, पानी पिला दे। पुत्री की अभी अभी शादी हुई है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो एक पत्र लिख रही है, वो पत्र लिख रही है, उसने कुछ सुना नहीं, कोई और सुन लेगा, दे देगा। कण्व की पुत्री है, बहुत सारी सखियां हैं, ऋषि कुमार हैं, कोई खाली आश्रम थोड़ी है, नहीं देती। अब वो थोड़ा और आगे आते हैं और जो दर्शक बैठा है अभी तक तो आराम से देख रहा था, बड़े एंजॉय कर रहा था इसको, नाटक को, जैसे ही वो थोड़ा आगे आते हैं दर्शक सजग हो जाता है, ये तो मान ही नहीं रहे, ये तो और आगे आ गए, थोड़ा जोर से बोलते हैं, भो पुत्री स्वस्ति स्वस्ति नीर आने। पुत्री तो फिर भी नहीं सुनती, वो तो पत्र ही लिख रही है। वो श्रृंगार रस चल रहा है और यहां पहले शांत रस था, शांत से रस थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं, थोड़ा उच्च आवाज में बोलते हैं तो अब जो दर्शक है जो आराम से सीट पे बैठा था थोड़ा आगे आ जाता है और ज्यादा अपने आप को तान लेता है, दर्शक एकाकार हो रहा है जो हो रहा है मंच पे उससे। पुत्री तो अभी भी नहीं सुनती, तो बेचारी अपने मगन में है, कौन क्या, ठीक है ले लो पानी, बहुत कुछ है। ऋषि और आगे आते हैं और जोर से बोलते हैं, तू कहां ध्यान मग्न है, तूने देखा नहीं दुर्वासा आए हैं। और जैसे ही दुर्वासा बोलते हैं सारा प्रेक्षक गृह अपनी सीट के किनारे पे आ जाता है, ये क्या हो रहा है, डरने लगता है, यहां रौद्र है और वहां भय है। जो श्रृंगार रस का परिपेक्ष था एक सेकंड में कितने रस चेंज हो गए, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही सीन चल रहा है, वही सेटिंग है, वही कलाकार है, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन जो प्रेक्षक चैन से श्रृंगार रस देख रहे थे अब वो भय में आ गए और जो यहाँ ऋषि हैं वो रौद्र में बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल उसके पास पहुंच के बोलते हैं जोर से, तुझसे अंतिम बार कहता हूं मुझे पानी पिला दे। और दर्शक कांप रहा है, वो चाहे तो उठ के दौड़ के पानी दे दे, इतना उसमें ओ जा रहा है, पर दर्शक की अपनी मर्यादा है, वो यहां से यहां नहीं आ सकता, वो कुछ भी चाहे। और ये श्रृंगार रस में डूबी कन्या और रौद्र रूप में ऋषि जैसे ही यह बोलते हैं कि तू जिसके ध्यान मग्न ये पत्र लिख रही है मैं तुझे श्राप देता हूं कि वो तुझे भूल जाएगा, वो जो दर्शक है वो रोने लग जाता है, करुण रस में आ जाता है। एक ही सीन में कितने रस कालिदास ले आए, एक ही सीन में वही दो पात्र और तीसरा पात्र दर्शक। यकीन कीजिए हर युग का दर्शक इस दृश्य पे रोया है और हर युग का दर्शक शिव का धनुष टूटते ही खुश हुआ है। कला वो है जो अभिनव गुप्त कहते हैं लोक में नहीं है पर रस कला में है, सिर्फ कला ही वो रस दे सकती है और क्योंकि कला रस दे सकती है इसलिए कला भावों को परिवर्तित कर सकती है और इसीलिए हमारे यहाँ चारण गीत हुए हैं, हमारे यहाँ शौर्य गीत हुए, हमारे यहाँ अनेकों तरह की ऐसी परंपराएं चली गीतों की कि जो मुश्किल से मुश्किल विज्ञान के ग्रंथ भी हैं वो भी छंदों में लिखे गए, वो भी काव्य में लिखे गए। और काव्य भी कैसा, जो गणित से युक्त है, उसकी मात्राएं, उसके छंद, उसकी ताल, उसकी लय सीमित है, बद्ध है। तो हम जो गीता पाठ करते हैं उसका भी, उसकी पहली शर्त है कि आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो गीत है। जब पहली बार व्यास गणपति के पास गए और कहा, ब्रह्मा ने निर्देशित किया है कि मेरा ये जो ब्लूप्रिंट है महाभारत का, ये सिर्फ आप ही लिख सकते हैं, उस समय गणपति ने एक शर्त लिखी कि मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बोलेंगे, जिस समय आप बोलना बंद कर देंगे मैं फिर उठ जाऊंगा। तो व्यास ने भी एक शर्त रखी, बोले ठीक है, लेकिन आपको भी जो मैं बोलूंगा उसके जितने संभावित अर्थ हैं उनका ज्ञान जब तक ना हो जाए तब तक आप लिखेंगे नहीं। और इस तरह से जब तक गणपति एक श्लोक लिखते थे, व्यास 6-7 श्लोकों की रचना कर लेते थे। गणपति तर्क हैं, बुद्धि हैं, अर्थ हैं, और व्यास भाव हैं, राग हैं, लय हैं। जब तक इनका मिश्रण नहीं होता तब तक कला नहीं बनती, और जब तक कला नहीं बनती तब तक, जिसे हम कहें, जीवन एकदम विरक्त रहता है। बहुत सी परंपराएं हैं, मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैं समाप्ति की तरफ आ रही हूं, मगर हम सिर्फ कलाओं से नहीं छूटे, हम अपने इतिहास से भी छूटे हैं। अभी मैं देख रही थी, कला म्यूजियम देख रही थी, और भी जगह देखा, सोमनाथ का मंदिर देखा। 1803 में एक युद्ध हुआ, वो युद्ध एक 15 साल के बच्चे ने, जो राजा था उसने शेरशाह से किया, जो अफगानिस्तान का राजा था। ये बच्चा पंजाब का राजा था, महाराजा रणजीत सिंह के नाम से हम जानते हैं, मात्र 15 वर्ष का। उस बच्चे ने उस राजा को जीत लिया और एक संधि की। अब क्योंकि अंग्रेज तब तक आ गए थे तो ट्रिपार्टाइट संधि हुई, त्रिपक्षीय संधि। उस संधि की पहली शर्त वो राजा लिखवाता है कि 800 साल पहले तुम्हारे पूर्वज जो मेरे सोमनाथ के दरवाजे लूट के ले गए हैं उन्हें वापस करो। पंजाब का राजा सोमनाथ के दरवाजे को अफगानिस्तान से मांग रहा है। ना व्हाट्सएप था, ना न्यूज़पेपर था, ना टेलीफोन्स था, कहां से सुना उसने? हम कहते हैं भारत एक नहीं है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट, व्हाट रविश आर वी टॉकिंग। हमारी एकता हमारी संस्कृति है, और वो लेकर माना वो दरवाजे जो आज भी अकाल तख्त की ड्योढ़ी में लगे हुए हैं। दूसरी शर्त रखता है कि आपके यहां जो भी आए और हमारा कोहिनूर हीरा लूट के ले गए वो वापस करो, और वसीयत में लिख के जाता है जिस दिन ये कोहिनूर हीरा आ जाए उसे उसे जगन्नाथपुरी के मेरे भगवान के मस्तक पर रख देना। अब पंजाब के राजा को उड़ीसा से क्या काम था, क्यों लिखवा रहा था? क्योंकि उससे 150 साल पहले जब गोविंद गुरु ने एक आह्वान दिया कि मुझे धर्म की रक्षा के लिए बस 5 लोग दे दो, 5 प्यारे, तो जो पहला हाथ उठा वो एक उड़िया का था। ये बच्चा उस उड़िया को श्रद्धांजलि देता है और कहता है वो कोहिनूर हीरा जगन्नाथ भगवान के माथे पर रखना। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किताबी बातों में इतने उलझ गए हैं कि हमें तो ये भी याद नहीं। आज मैं जगह जगह जाती हूँ, लोग कहते हैं आप सस्टेनेबिलिटी का एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दीजिए, आप कुछ ऑर्गेनिक खेती की बात कराइए, आप बच्चों को नेचुरल फार्मिंग सिखाइए। और मैं कहती हूँ सिखाइए, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ का मूल ही कृषि है, जिसके कृषि उत्पाद से हम 32% की जीडीपी रखते थे, उस देश के किसान को आज हम किसानी सिखाएंगे? जिस देश में आज जब नवरात्रि मनाते हैं हम एक घड़ा लाते हैं, घड़े में मिट्टी डालते हैं, उसमें छेद करते हैं, पानी डालते हैं, नया बीज बोते हैं, उस पर अखंड दिया जलाते हैं, सो आर्टिफिशियली वी आर क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फियर जो जमीन के अंदर बीज बोने पे होता है। 9 दिन तक वो दिया जलता है, पानी पड़ता है, बीज उगता है, जिसे हम नौ रता कहते हैं, नौ रात। ये हमारी इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग सिस्टम हर घर में होती थी। हर घर ये देखता था इस बार कितना उगेगा, और 10वें दिन वो हम घड़ा उठा के मंदिर में देके आते हैं। जो हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर होता था तो वहां ये देखा जाता था, इस गांव से आए घड़ों में इतनी उपज हुई, इसमें नहीं हुई, इसमें कम हुई। हम तो प्रिडिक्टिव इकोनॉमी वाले लोग हैं, हम राजा को 6 महीने पहले बता देते थे अनाज कैसा होगा, और राजा भी आने वाले साल का टैक्सेशन उसके ऊपर अनाउंस करता था। इतना साइंटिफिक जो देश है, उस देश के किसान को हम सिखाएंगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? पर आज सिखानी पड़ती है, क्योंकि हम ये भी भूल गए कि बस 40 साल पहले तक ये देश हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी लाल गेहूं खाने पर मजबूर हुए थे। 1947 में जब देश बटा तो सिर्फ देश नहीं बटा था, सिर्फ लोग नहीं बटे थे, हमारी सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन हमसे छिन गई पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान में। सबसे उपजाऊ जमीन 10 साल में हमने नतीजा देखा कि देश में भूखमरी हो गई, हमारे प्रधानमंत्री तक को एक वक्त का उपवास करना पड़ा, उनके साथ पूरे देश ने उपवास किया। और जब भीख मांगने निकले तो जो गेहूं मिला उसके बोरे पर लिखा होता था, दिस क्रॉप इज बॉर्न फॉर द पिग्स, सुअरों के लिए उगाया गया अनाज हमने खाया। लेकिन फिर क्या जरूरत थी? हरित क्रांति की। इसलिए केमिकल्स डाले जमीन में ताकि एक साल में 2 की बजाय 4 फसलें निकाल सके। आज जब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम वापस चले जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में? कोई मत सिखाए, हमें मत बताइए सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। ये पश्चिमी किताबें, ये पश्चिमी ज्ञान, ये पश्चिमी जो इतना सूक्ष्म नैरोड माइक्रो दृष्टि रखने वाला ज्ञान है, हमारा भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी बजिद हूं सस्टेनेबिलिटी की जो परिभाषा आपकी है वो डिपार्टमेंट नहीं खुलेगा। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें आज स्टार्टअप की करते हैं, इनोवेशन की करते हैं, क्या है स्टार्टअप आप हमें बताएंगे? आज उस स्टार्टअप में पूछिए 5 साल बाद कितने बंद हो जाते हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, वो इतनी बड़ी चेन, मैं नाम नहीं लूंगी, उस चेन के मालिक ने स्टार्टअप के ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल आया है ना स्टार्टअप का, एक बच्चा वही विचार करे, वही मॉडल बनाए, वही मार्केटिंग करे, वही ब्रांडिंग करे, वही फाइनेंस देके, वही समझाए, वही बेचे। हमारा मॉडल देखिए, एक बच्चे को दुकान खोलनी होती थी तो माँ के घर का सोना गिरवी रखा जाता था, माँ पैसे देती थी, पिताजी दरी लाते थे, चाचा जी पंखा लगाते थे, दोपहर को भाई आके लंच के टाइम बैठ के कहता था तू खाना खा, तब तक दुकान मैं देखता हूँ। और अगर वो फेल हो जाती थी तो हम बिजनेस चेंज कर देते थे, नहीं चला दूसरा खोल लिया। आज स्टार्टअप वाले बच्चे का बिजनेस फेल हो तो शर्म से किसी से बात नहीं कर सकता। हमारे मॉडल्स बहुत सस्टेनेबल हैं। क्यों? क्योंकि उसके धरातल में कला है। हर सुबह परिवार में संगीत गूंजता है, चाहे किसी भी फॉर्म में गूंजता हो, वो आरती हो, वो भजन हो, वो इंस्ट्रूमेंटल हो, हम जुड़े हैं, हम एक तार बोलते हैं, हम एक आत्म बोलते हैं। मुझे यहाँ बहुत विषयांतर नहीं करना था, पर मैं भावनाओं में विषयांतर में चली गई, लेकिन मूल में जो कला है, उस कला का जो राग है, वो तो वियोग से ही आया है। हम कहते हैं विभक्त होकर ही भक्त हो सकते हैं, तो भक्ति के लिए पहले जुड़ना जरूरी है, फिर विभक्त होना आवश्यक है, फिर हम भक्ति करें। लेकिन कला अपने मूल में रखकर उसका जो मूल्य उद्देश्य है, और मूल्य उद्देश्य है शांति। उस तीन लोक की शांति के साथ यदि हम कला को पहचाने तो आई एम श्योर हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीरजा जी। बहुत ही गहरा मूल चीज से जुड़ा हुआ और स्वयं के अंदर स्वयं को टटोलने वाली बात आपने कही। और ये भी सत्य कहा कि रस कला के अंदर है, इसीलिए अगर किसी ने भगवान को पाया है तो गीत गाकर ही पाया है, और किसी तरीके से तो नहीं पाया है, चाहे वो गीत भजन कुछ भी है, लेकिन क्योंकि रस तो उसी के अंदर है। साथ ही जो हमारी संस्कृति है वो बची भी इसीलिए रही, जो आपने कहा कि वास्तव में जो हमारे लोकोक्तियां थीं, जो व्यक्ति बैठ करके बात करते थे, जो कि लोकगीत थे, इन सब चीजों ने हमारी संस्कृति को बहुत प्यार से बचा के रखा। और आपसी जो प्रेम आपने कहा कि कहां उड़ीसा के व्यक्ति के लिए पंजाब का व्यक्ति जो है वो मांग कर रहा है, तो ये आपसी परस्पर प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो हमें वापस अपनी संस्कृति की तरफ ही लौटना पड़ेगा, तभी हम इस मानव जाति में विजयी बनकर के अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार हम पुनः आपका जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं। और अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता राजेश जैस जी को। आप बॉलीवुड एक्टर हैं, मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभिनय आपका शौक है, प्रोफेशन नहीं था। ऐसे तो आप एक देशभक्त परिवार से जुड़े हैं, एयरफोर्स में आपके सभी वरिष्ठ रहे कार्यरत, और बहुत पढ़ाई बहुत कुछ आपने किया, लेकिन आखिर आपकी डेस्टिनी ने आपको एक्टर ही बनाया। तो धीरे धीरे आपका शौक ही आपका प्रोफेशन बन गया। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और लगभग 3 दशकों से अधिक समय से आप वेब सीरीज, फिल्म, टीवी, विज्ञापन और मंच पर आप प्रोफेशनली एक्टिंग कर रहे हैं। आपने अपने अभिनय से ऑडियंस को बहुत एंटरटेन किया है, और मूल रूप से मेरी जो आपसे थोड़ी बातचीत हुई उससे जो जाना वो यही जाना कि आपके सराउंडिंग बहुत सारे कांटे थे और आप उन कांटों में से एक फूल बन के निखरे हैं। तो ऐसे भ्राता जी का मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अपनी गुड विशेस हमारे बीच में देंगे।
जो बोलना चाहता था वो सब कुछ बिखर गया। विषयांतर जो हुआ कुलपति जी का, नीरजा गुप्ता जी का, उससे मैं आत्ममुग्ध हूं। सब भूल गया क्या बोलना था। इतनी सुंदर विवेचना कला संस्कृति साहित्य की मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और जाहिर है इतनी विद्वान है, इसलिए बहुत जरूरी होता है लोगों को सुनना, विद्वानों को सुनना। ऐसा लग रहा है कितने सालों की विद्या आज मुझे मिल गई, और ये सब उस परम पिता परमेश्वर बाबा जी का आशीर्वाद है जिन्होंने ऐसी रचना रची कि मैं आज यहां हूं। और मुझे लग रहा है एक बार दोबारा एनएसडी का एजुकेशन मिल गया मुझे निर्जा जी से। आज यहां मेरा होना और इस पूरे माहौल की जो ऊर्जा है, जो ओज है, जो पवित्रता है, साथ मुझसे कल ही पूछा जा रहा था कि आप कुछ बताइए यहां के बारे में। मैंने कहा अभी तक मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग दिस एनर्जी विच इज गोइंग थ्रू इनसाइड माय वेन्स। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स अराउंड मी, द एटमॉस्फेयर अराउंड मी। दयाल जी, नितिन जी और मोनिका, जिनके माध्यम से मैं यहां आया, इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। कॉलेज के दिनों में ग्लाइडर उड़ाता था, गोलियां चलाता था, खूब गोलियां चलाई, लेफ्टिनेंट में हुआ 2 बार, कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ 1 बार, जर्नलिज्म करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में नेट क्लियर किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड पीएचडी, वो सब सिर्फ एक सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन ऑफ डिफेंस था, क्योंकि अंदर एक बात तय थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो आत्मा के करीब हो, मैं जिंदगी में वही करूंगा डेफिनेटली, चाहे उसके लिए भूखा मर जाऊं, वही करूंगा जो मेरी आत्मा बोल रही है, जिससे मुझे शांति मिल रही है, जिससे मुझे आनंद मिल रहा है, जिसमें मुझे उन्माद मिल रहा है। क्योंकि जो आप पसंद करते हैं उस पर अगर कार्यरत होंगे तो आप कभी थकेंगे नहीं। और यही वजह है, मैं देखता हूं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जिंदगी में तो काम तो किया नहीं, बचपन में भी मैदान में क्रिकेट खेलते थे, बुढ़ापे तक अभी तक वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो मैं भी वैसा ही करना चाहता था और वही कर रहा हूं। तो मैं उन प्रिविलेज्ड लोगों में से हूं जो नौकरी नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट हैं। कल से आज तक कला संस्कृति साहित्य से जुड़े लोगों पर जितनी विवेचना हुई, जिस तरह से उनको प्रशंसा किया गया, उनके बारे में उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, वो सब सुनकर देखकर मेरे अंदर एक अलग से ऊर्जा आई। और मुझे लग रहा है कि 35-40 साल पहले लिया गया मेरा अपने खुद का निर्णय आज मुझे साबित हो रहा कि कितना सही है। ये उस समय की बात है जब मैं एक्टर हूं, बोलने में शर्म आती थी, हिम्मत नहीं होती थी, और वो भी रांची जैसी जगह में जो उस समय बिहार का एक पार्ट था, अभी तो राजधानी बन गया इसलिए लोग जानते भी हैं, और रांची कितना छोटा है ये मुझे तब पता लगा जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी दिल्ली आया। लोग पूछते थे कहां से हो, मैं कहता था रांची से, तो कहते थे कराची से, तब मुझे झटका लगा। तब तक मैं इस मुगालते में था कि रांची बहुत बड़ी जगह है। तो लोगों का स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन, विभिन्न लोगों से मिलने से एक एनालिसिस होता है। आप कई बार अपने आप के बारे में नहीं जानते, मुझे भी अपने बारे में बहुत कुछ नहीं पता जो मुझे लोगों से पता लगता है, क्योंकि सबका ज्ञान मुझसे कहीं किसी मामले में तो ज्यादा है। आज ये जो शीर्षक है, परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव, ये भले ही यहां टेक्स्ट में लिखा हो, लेकिन मुझे अंदर बचपन से ऐसा आभास होता रहा है कि मैं बाकियों से अलग हूं। अब ये बात अगर बोलता कहीं तो लोग मजाक का पात्र बनता है, लोग हंसी उड़ाते, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ अलग हूं। वो अलग क्या है उसकी परिकल्पना बिल्कुल क्लियर थी कि मैं देशभक्त हूं, इस समाज में कोई भी गलत काम नहीं करना है, जो भी करना है पॉजिटिव करना है, ये मुझे पता था और उसी की तलाश करता रहता था। आज इतनी सारी बातें सुनने के बाद मन से आ रहा है, वो मंत्र फिर से याद आ रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरे आसपास नहीं होते तो आज मैं यहां खड़ा हूं नहीं हो पाता, गुरुओं ने ही मुझे मार्गदर्शन किया है, हमेशा उनसे नई नई अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जब क्रिकेट खेलते थे बच्चे लोग तो कहीं बगल से आवाज आती थी, वो शास्त्रीय संगीत का रियाज होता था, वो सितार बजता था, वो तानपुरा पे अभ्यास होता था, तो मैं उधर ही उस खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता था। तो अंदर से पाठक सर निकले एक बार बाहर, बोले क्या करता रहता रे हमारा घर का बाहर खड़ा हो गया तुम? हम बोले सर गाना सुनते हैं। तो अच्छा लगता है? मैं हाँ अच्छा लगता है। तो सीखा कुछ? मैंने पता नहीं सीखा तो नहीं, लेकिन मजा बहुत आता है। तो बोले अच्छा भोपाली सुनाओ। हम बोले सारे का पद साहब सुना दिए गा के। अरे तो सीखता का है नहीं? हम बोले पैसा नहीं है। तो बोले हम तुमसे पैसा मांगे हैं, कल से आ जाओ सीखने। तो उन्होंने सिखाया, शास्त्रीय गायन में भूषण तक करवाया, लेकिन मैंने उसको परस्यू नहीं किया किन्हीं अन्य कारणों से, क्योंकि विंग्स में बैठा दिया जाता था नाटक में, और मैं डुगी तबला हारमोनियम ये सब लेके बैठा रहता था। मेरे लोग आते थे देखने, बोलते महीना भर रिहर्सल किया, दिखा तो है ही नहीं। तो मुझे आवाज हुआ कि नहीं चेंज करना चाहिए, तो चेंज कर लिया। तो सार ये है कि मेरे आसपास जो एनर्जीज हैं वो कैसे आई, ये रहस्य उद्घाटन हुआ मेरे खुद से कि आप जैसा सोचते हैं, जो चाहते हैं एटमॉस्फेयर से, वो एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हैं अनजाने में। मुंबई आने की इच्छा थी लेकिन मेरे पास साधन नहीं थे, हिम्मत नहीं थी, और लगता था मुंबई तो मतलब न्यूयॉर्क है, सर्वाइव भी कैसे करूंगा, लेकिन हमारे काम का मक्का मदीना मुंबई ही है। तो सौरभ शुक्ला और अनिल चौधरी ये दोस्त हुआ करते थे वहां दिल्ली के, वो सीधे मेरे कमरे में सुबह 9:30 बजे एक टिकट लेके आ गए और बोले कि 2:20 की फ्रंटियर जा रही है मुंबई। मैंने कहा हाँ, तो बोले आज वाली स्पेशल है। मैंने कहा कैसे? बोले इसमें राजेश जैस भी जा रहा है। मैंने बड़ी अच्छी बात है, मैंने मैं जा रहा हूं और मुझे ही नहीं पता, और तुम लोगों ने डिसीजन ले लिया एज इफ कि यू आर माय पेरेंट्स। उन्होंने टिकट निकाल के दिखाया, तब मुझे विश्वास हुआ। और आपाधापी में मैंने भी उसी तरह बोरिया बिस्तर बांधा और 3 सूटकेस भर के जो जेरोक्स करा के, जो किताब नहीं खरीद सकता था तो जेरोक्स करा के रखे थे सब्सिडाइज रेट पे एनएसडी में, कि जिंदगी भर पढ़ाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो किताबें काम आएंगी। तो ही मकान मालिक के यहाँ छोड़ा और कट्टू मुंबई आ गया और आज का दिन है, लौट के वापस नहीं गया। तो ये एनर्जीज हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज रिलीजन? फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग प्रेयर और परसुइंग रिचुअल्स, इट्स अबाउट थिंकिंग योरसेल्फ। मैं उठता हूं सुबह, मेडिटेट करता हूं, प्राणायाम करता हूं, कपालभाति करता हूं, भ्रमरी करता हूं, और ये कपालभाति भ्रमरी ये सब जब नाटक करता था जब बचपन में छोटे में तभी सीख चुका था। नाटक में बड़ी अच्छी बात है कि वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स में योगिक ज्ञान बहुत दिया जाता है, हम जाने अनजाने बहुत सारी अलौकिक चीजें सीख जाते हैं उसमें। जो लोग कला से जुड़े हैं सभी जानते हैं, वो तो बाबा रामदेव आए तब उन्होंने कपालभाति को ऐसा प्रचार किया तब लगा अच्छा कपालभाति नई चीज है, नहीं ऐसा नहीं था, हम सब सीखते रहे हैं। और हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, जैसे हम जिस प्रोफेशन को मैं परस्यू कर रहा हूं, 5वां वेद है वो नाट्य वेद। नाट्य वेद में अभिनय के 4 प्रकार लिखे हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक होता है जो भावभंगिमा से करते हैं, वाचिक होता है शब्द से, आहार्य होता है मेकअप, कॉस्ट्यूम, ये सब। और सबसे उच्च उसमें है स्थान सात्विक का। वो सात्विक अभिनय ही है जो आत्मा से होती है और आत्मा को टच करती है। हम तभी तो डिसाइड करती है अच्छा एक्टर है, ये साधारण एक्टर है, ये एक्टर ही नहीं है, या बुरा एक्टर है। बहुत सारे ऐसे उच्च कोटि के नाम जो अच्छे एक्टर हम किनको बोलते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं, हर पात में ऐसे घुल जाते हैं, वैसे तरल पदार्थ होते हैं पानी की तरह, कि किसी भी शेप के पात्र में रखिए आप उसका शेप ले लेते हैं। तो यही खूबसूरती है कि आप अपने माहौल में ऐसे रच बस जाएं, ऐसे घुल जाएं कि आपका अलग से कोई अस्तित्व ही ना लगे। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, इंटरनेट वरदान भी है तो श्राप भी है, ये डिजिटल वर्ल्ड मोबाइल वरदान भी है तो श्राप भी है। मोबाइल लेके हम बैठे रहते हैं घंटों, अपने मेरे बगल में जो दोस्त यार माता पिता भाई बहन संगी साथी बैठे उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। पहले किताबों का आदान प्रदान होता था, नॉवेल्स पढ़ के एक दूसरे को लौटाते थे, उनसे पूछते थे कैसे लगी क्या, वो सब बंद हो गया। जस्ट बिकॉज वी गॉट स्टक इन टू रील्स एंड ऑल, दिस डजंट गिव यू डेप्थ इन द लाइफ। शायद समय कम पड़ रहा है, जल्दी वाइंड अप करना है, मैं बह गया, जज्बाती हो जाता हूं। एनीवेज, तो इस स्पिरिचुअल माहौल में आके मैं पहली बार ऐसे किसी संस्थान में, ऐसे किसी गोष्ठी में आया हूं, और ये मेरे लिए दिस इज आई एम रियली वेरी प्राउड एंड आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड टू बी इन्वाइटेड हियर बाय यू जेंटलमैन भाई बहन। और इसको मैं अपने जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा मान के यहां से जाऊंगा, और ये हमेशा मेरे जहन में रहेगा कि एक ऐसी जगह, ऐसी पवित्र जगह आई जहां मुझे सिर्फ पवित्रता का एहसास हो रहा है और एक नई ऊर्जा का संचालन हो रहा है अंदर, और रिज्यूविनेट होके जा रहा हूं यहां से। ओम शांति। ज्यादा समय नहीं लूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई जी का, और हम ऐसा चाहेंगे कि आप आए हैं लेकिन आप आते रहिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप एक बार आए हैं। बाप के घर तो समय प्रति समय आते रहते हैं, और ऐसी हमको भावना आ रही थी आपसे कि क्योंकि मैंने कुछ बात भी की आपसे, तो जो ओवरऑल निकल के आई चीजें वो यही निकल के आई कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है उससे आप भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, और इसको प्लीज आप ध्यान पे रखिएगा और आते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता धर्मेंद्र गुप्ता जी, आप भी एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं, एनएसडी से ही हैं आप भी, आप हिंदी फिल्म आदि में आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, साथ ही वैल्यू क्रिएशन फिल्म है, फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है उसके आप प्रोप्राइटर भी हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया आप भी अपनी गुड विशेज हमारे बीच में रखेंगे, समय की सीमा को सभी हमारे वक्तागण ध्यान पर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। सभी दिव्य भाव से मिले मेरे साथ, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस आबू पर्वत पर स्थित इस शिव धाम में, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। परमादरणीय बहन जी चंद्रिका दीदी जी, पूनम दीदी जी, दयाल भाई साहब जी और एक और हमारे भाई हैं दिनेश जी दिल्ली से, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इस प्रकृति की गोद में इस पर्वत पर इतना सुंदर ये स्थल है, तो सर्वप्रथम जब व्यक्ति यहां आता है तो एक ऊर्जा का समागम ऑटोमेटिकली उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। मैं अपने अनुभव आपके सामने रखूंगा कि जैसा का कहा कि ये परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव है। तमाम मनीषियों ने पहले बोला कि ये दिव्यता हमारे अंदर से समाप्त होती जा रही है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक नहीं हूं, शायद आपको गलत हो रहा। मेरे जो गुरु हैं वो बीएम शाह साहब, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक थे, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में मैंने अभिनय सीखा है। मैंने जैसे अपने जीवन में, जब कोई भी व्यक्ति अपने जननी के गर्भ से जब जन्म लेता है तो पहला ज्ञान उसको परिवार से मिलता है, अपनी माँ से, पिता से, दादा दादी से, बुआओं से, चाचाओं से। तत्पश्चात वो विद्यालय में जाता है, वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान आगे बढ़ता है। तब तक उसका जीवन बहुत शांत होता है, बहुत सरल होता है, उसमें सारे भाव होते हैं। जैसा कि निर्जा जी ने कहा कि वो भाव ही समावेश है जो हमारे अंदर, कालिदास के बारे में कहा, मैं जैसे राजेश जी ने कहा कि हम आज, उन्होंने कालिदास जी का जो उदाहरण दिया फिर से जागृत हुआ वो साहित्य। लेकिन जब मैं कला जगत में आया, जब मुझे परिवार की जिम्मेदारियां मिली, तब असली जीवन शुरू होता है। जीवन का सही समय तभी शुरू होता है और जब आपको भौतिकता इस विश्व में, जहां प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास कई बार पैसा नहीं होता है, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिता की जिम्मेदारियां होती हैं, उस समय जीवन की वो दिव्यता, वो अंदर का अध्यात्म समाप्त होने लगता है। मैं भी एक छोटे शहर ग्वालियर से मुंबई आया 91 में, आज भी वहां मौजूद हूं, मेरी पत्नी भी मौजूद है, मेरे यहां परम आदरणीय सास ससुर भी मौजूद हैं और मैंने वहीं प्रेम विवाह किया, दो मेरी बेटियां हैं। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन वहां व्यतीत किया। धीरे 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 जीवन का रस समाप्त होने लगा। पता नहीं क्या तलाश है, वो साहित्य, वो आध्यात्म, वो दिव्यता, वो मानवता समाप्त होने लगी, विलुप्त होने लगी। अंदर सब कुछ है लेकिन सिर्फ भौतिकता ही याद है, जिम्मेदारियां याद है, जीवन क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, भटकाव है। और एक ही बात सामने है कि अभिनय करना है, एक अभिनेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। काम किया, काफी काम किया, लेकिन सही मार्ग क्या है, सही जीवन क्या है, पथ से भटक गया मैं। अचानक ये पता नहीं कहां से मुझे दिनेश जी का एक दिल्ली से फोन आया, उन्होंने कहा कि आप इस आर्ट एंड कल्चर जो हमारा समारोह होता है हर वर्ष, आप आमंत्रित हैं। एक सेलिब्रिटी की तरह से मैंने कि नहीं सर, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम सब मानव हैं, मैं खुद तलाश कर रहा हूं जीवन में मुझे कहां पहुंचना है, जीवन क्या है मुझे नहीं पता है। हर दिन मैं चिढ़ता हूं, हर दिन गुस्सा करता हूं, बच्चों पर नाराज होता हूं, पत्नी पर नाराज होता हूं, कई बार काम नहीं होता है, भटकाव है। शिव का मैं भी आराधक था, अपने कॉलेज लाइफ तक मैं बहुत बड़ा भक्त था शिव का, आज वो शिव भी मेरे अंदर विलुप्त हो गए। शायद आपने मुझे जगाने के लिए, एक आगे मार्ग दिखाने के लिए ये फोन किया है। मैंने तब भी उनसे कहा कि देखिए हमारा काम कभी भी आता है, शूटिंग्स के लिए कभी फोन आते हैं, मैं अभी से आपको वचन नहीं दे सकता हूं कि दो महीने के पश्चात मैं आ जाऊंगा। बोले सर आप प्रयास कीजिए, भगवान आपको अवश्य लेकर आएगा, वो परमपिता शिव आपको अवश्य रास्ता दिखाएंगे। मेरी पत्नी हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती है, उन्होंने बताया कि मैं अपने माता पिता को भी लेकर चलती हूं, आप मन बनाइए हम चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके पश्चात भी कई ऐसे रुकावटें आई, दो बार हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हुआ, मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं, इनको हार्ट ट्रबल हुई, इनके हार्ट में स्टंट पड़े, मेरी सास हैं उनको थोड़ा सा पैरालिटिक समस्या है, मुझे कुछ काम के फोन आने लगे। अक्सर ऐसा होता कि जब भी आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे होते हैं कुछ भौतिकता आपको रोकने लगती है, आप दिव्यता की ओर जा रहे हैं, सही मार्ग वो है, लेकिन आपको भौतिक चीज आपको रोकने लगती है। मेरी पत्नी कई बार ये शिकायत करती है तुम कहीं नहीं पहुंचते हो, वो सही है। मुंबई में आने के पश्चात मेरे सारे रिश्ते नाते मुझसे टूट गए, मैं सिर्फ एक ही पाथ पर चल रहा था, अभिनय, पैसा। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, उस शिव का मैं धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है कि मैं यहां आज मौजूद हूं। शायद जीवन का जो रास्ता मैं तलाश कर रहा हूं, इन तीन दिनों में मैं परम आदरणीय चंद्रिका दीदी से या पूनम दीदी से, आज जितने भी दयाल भाई साहब हैं, जो भी लोग हैं, जो मनीषी हैं, उनसे जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा और जीवन का सही अर्थ क्या है ये मैं समझ पाऊंगा। मैं ये शायद मेरा स्वर्णिम दिन है कि इस परम कलाकार के इस ज्ञान सरोवर में मैंने यह कदम रखा है और मुझे एक बेटर वर्ल्ड का रियलाइजेशन, एक आत्मबोध, आत्मज्ञान अवश्य होगा और मैं यहां से एक नई ऊर्जा लेकर जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता धर्मेंद्र गुप्ता जी का, आपने अपना अनुभव शेयर किया। चलिए आप पहुंच तो गए हैं, रास्ते इख्तियार कर लेते हैं तो मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, साथ ही नम्र निवेदन भी कर रही हूँ, परम आदरणीय आदरणीय राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी, जो कि हम सभी को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। आप जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज की, आदरणीय दीदी स्पिरिचुअल लीडर हैं, राजयोग का टीचर हैं और लगभग पिछले 65 वर्षों से दुनिया भर के अनेक देशों में और अनगिनत लोगों के जीवन को आपने आध्यात्म की गहराई से प्रभावित किया है। वर्तमान समय संस्था के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं ब्रह्मा कुमारीज, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के यूरोपियन के डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारी जर्मनी के भी आप डायरेक्टर हैं और वहीं पर ही एक सेमिनार हाउस मॉरिगेन रिट्रीट सेंटर, उसके भी आप डायरेक्टर हैं। और 2023 से मैं 21 वर्ष की आयु में आपको मानसरोवर के ज्ञान सरोवर के सीनियर डायरेक्टर के रूप में भी नियुक्त किया गया। आपको जर्मनी के विदेश मंत्रालय द्वारा बर्लिन में शांति के लिए धर्मों की जिम्मेवारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। आपको तेहरान के धर्म समकालीन जागृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी वर्ष आपको लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भारत गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप केवल देश ही नहीं लेकिन विदेश में आपने इस ज्ञान की गंगा को बहाया है। ये तो हम एक क्योंकि कॉन्फ्रेंस है इस खातिर हम आपका इंट्रोडक्शन इस रूप से दे रहे हैं। अगर आप इस चीज को गहराई से लें तो वास्तव में आप वो हस्ती हैं जो जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, जिसकी प्रेरणा से आप अपने सभी कार्य करते हैं, जिनकी ब्लेसिंग से आप उड़ती हैं, उड़ाती हैं और इस ईश्वरीय कार्य को आपने इतना आगे बढ़ाया है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो सेवाएं की हैं वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक माइलस्टोन के रूप से खड़ी हुई हैं। तो ऐसी अनेक बहुमुखी प्रतिभा की धनी और अनेकानेक अवार्ड से सम्मानित राजयोगिनी आदरणीय परम आदरणीय सुदेश दीदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी ब्लेसिंग से हमें अभिभूत करेंगी। आदरणीय दीदी जी, जोरदार तालियों के साथ हम आपका सम्मान और स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। मैं अपने आसपास मंच पर विराजमान सबका नाम की माला जपूं तो कम बात कम नहीं है, पर दिल से सबका स्वागत करती हूं। हीरों का हार है, नीरज दीदी ने बहन ने कहा कोहनूर हीरा, परंतु आप सभी कोहनूर हीरे से कम नहीं है। आपके जीवन के डिफरेंट फैसेट्स, आपके जीवन के अनुभव की वैल्यू, अनुभव जो कितना वैल्यूबल है और कितनी गहरी और अच्छी तरह से आपने परम कलाकार की विशेषता का और अन्य कलाकारों की विशेषता बताई। और आज हम बोल रहे हैं सुप्रीम कलाकार की बात। सुप्रीम क्यों कहा? उनके साथ और कलाकार होंगे ना, तभी तो सुप्रीम नाम दिया। और चंद्रिका दीदी ने बताया वंडर इस कला का ये है कि हर एक अद्वितीय है। मेरे मन में शब्द आ रहा था हर एक अनन्य है। एक उससे जो तरह नहीं हो सकता, विशेष है। तो सुप्रीम कलाकार के साथ ये खेस खेल में इस रंगमंच पर तीन चीजें अनादि हैं, अविनाशी हैं, अनादि हैं, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। तो परमात्मा तो सुप्रीम कलाकार है, परंतु प्रकृति इतनी सुंदर, हर चीज में कला समाई हुई है, हर चीज में, हर तत्व में कला समाई है, हर एक्सप्रेशन में विशेष कला है। और उस कलाकार परमपिता परमात्मा की रचना, ये चैतन्य कलाकार जिनके बाद में चित्र पूजे गए हैं, तो वो विशेष परमपिता परम कलाकार चरित्र बनाता है, उनके चित्र पूजे जाते हैं। और उस चित्र कलाकार, विचित्र कलाकार की कला संपूर्णता की कला है, जिसमें और कुछ एडिशन नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न दिव्य कलाकार दिव्यता में देवताओं की जब महिमा करते हैं, तो पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, भला 16 ही क्यों कहा, 25, 30, 50 क्यों नहीं, कलाएं तो बहुत हैं। परंतु इस कला का भी चक्र है, हमेशा आप देखेंगे चंद्रमा की 16 कला, 14 कला होते भी 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 14वीं पूरी हो गई, चंद्रमा पूर्णमासी कहा जाता है, फिर भी वो कला 2 दिन ऐसे रहती है जैसे हाँ आज भी पूर्णमासी है क्या, आज भी पूर्णमासी है क्या। तो संपूर्ण कला जो है, वो जो सबको संपूर्ण बनाने वाले, वो परमपिता परमात्मा दिव्य कलाकार, देवताओं के भी देवताएं देवता हैं, ब्रह्मा जी देवता हैं, विष्णु देवता हैं, शंकर देवता हैं, बाकी गणेश जी देवता हैं, हनुमान जी देवता हैं, देवियां देवियां हैं। परंतु उनके अंदर दिव्यता लाने वाला कौन, उन सब का परम पूज्य अथवा ऐसा बनाने वाला वो निराकार। वंडर तो ये है, वो ऐसा चित्रकार विचित्र कलाकार है, बाकी चित्रकार है चित्र बनाते हैं, ये विचित्र ऐसा चित्रकार है जो ऐसा सुंदर चरित्र बनाते हैं। और जैसे कलाकार साधारण चीज को इतना सुंदर बना देते, पत्थर को हीरा बना देते। मुझे याद है छोटी सी एक बात, हम छोटे थे उस समय, वर्कशॉप की बात नहीं होती थी, मैं 3री क्लास में पढ़ती थी, तो हमारी टीचर एक बास्केट लेकर आई, उस बास्केट में सब फेंकी हुई चीजें, रफ चीजें थी, इंजेक्शन की गोलियां खाओ, मक्की खाओ तो उसका जो 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 भी कोर होता है, अच्छा माचिस के खाली बॉक्स, माचिस के बॉक्स, मतलब रफ चीजें थी सारी। तो हम आपस में देखने लगे कि हमने तो कोई गंदगी फैलाई नहीं है, आज ये टीचर हमको पनिश करेगी, हमने यहाँ का वातावरण गंदा किया है। उसने कहा डरो नहीं, आपने कुछ इन सब रफ चीजों को नहीं फेंका है, मैं आज लेके आई हूँ आपसे कुछ विशेष कार्य करवाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, आप इसको ऐसे जोड़ो, ऐसा ऐसा सुंदर इसका रूप बनाओ जो ये काम की चीज बन जावे, बेकार की चीज, फेंकी हुई चीज कमरे में आ जावे, घर में आ जावे, सज जावे। अभी ये वो अभी तो समझ में आता है कि किस प्रकार से हम शो पीस बना सकते हैं छोटी छोटी चीजों का। तो उन्होंने साथ में एक किकर का वो लेके आई थी ब्रांच। किकर एक ऐसा पेड़ है जिसके कांटे बड़े लंबे लंबे सुई जैसे होते हैं, किकर का कांटा बोलते हैं। अच्छा, उसने वो भी लाई, हमने कहा पता नहीं इस ये क्या काम आएगा। और साथ में पॉपकॉर्न लेके आई थी, हमको ये था कि हमको पॉपकॉर्न खिलाएंगी तो हम तो खुश थे, पॉपकॉर्न मिलेंगे बाद में। एनीवे उसने कहा कि इन सब चीजों को यूज करने का है पॉपकॉर्न। तो जो ग्रुप ने वो पॉपकॉर्न को कीकर के पेड़ पर लगा दिया उसको इनाम मिला। तो क्या कला थी कि जो चीज कांटा है कांटे को फूलों का एक गुच्छा बना दिया, कला ये थी। तो जिसकी जो देखने में चीज बेकार है उसको सुंदर बना दिया। तो कालिदास जी की कहानी भी आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से उनको वरदान मिला था अपने ही जीवन को, वो जिनको मालूम नहीं कि कैसे बचाना है उनको सरस्वती ने वरदान दिया और वो आज तक भी उनके काव्य की महिमा तो नीरजा बहन ने बहुत सुनाई। मतलब एक कला नहीं अनेक कलाएं। तो परमपिता परमात्मा पत्थर को हीरा बनाने वाले चैतन्य जैसे मूर्तिकार पत्थर को घड़ के मूर्ति बना देते हैं। परंतु एक बात विशेष है, मूर्ति बनी हुई हो, दुकानदार के पास पड़ी है, बोरे भरे हुए पड़े हैं और हम कहते हैं प्लीज हमको वो मूर्ति जो शेल्फ पर रखी है ना डिस्प्ले के लिए उसमें से ऐसी मूर्ति चाहिए, वो कहता है अच्छा निकाल के देता हूं। वो बोरे पर चढ़ता है और उस पर चढ़ करके मूर्ति लाके हमको दे देता है। मंदिर में मूर्ति जाती है, पूजा नहीं होती है। वैसे देखा जाए कब तक पूजा नहीं होती, कितने महीने पड़ी रहे, पर जब तक प्राण प्रतिष्ठान नहीं हुआ है उसमें, प्राण प्रतिष्ठान यानी मूर्ति पूजनीय तब है जब उसमें आत्मा का आह्वान हुआ है, शरीर छोड़ा मन प्राण निकल गए। तो लाइफ में दिव्यता भरी, लाइफ में कला भरी तब पूजनीय मुहूर्त है। इसलिए देवताओं के जितने भी अलंकार हैं वो एक तरफ देखेंगे हर एक देवता के हाथ में चार चीजें हैं, स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल। इसलिए परमात्मा को तीनों प्रकार का वास्तव में प्रेरणा देने वाला कलाकार परम पिता माता पिता भी हैं, शरीर के माता पिता भी निमित्त है, प्रकृति भी निमित्त है और परमात्मा परम कलाकार है। क्योंकि परम पिता परमात्मा सर्व शक्तियों से संपन्न है, सर्व गुणों के भंडार है, परंतु निस्वार्थ निष्पक्ष कल्याणकारी हैं। तो कला वो जो सबको आनंद दे, सबको सुख दे, कांटे को फूल बनाए, पत्थर को हीरा तुल्य बना देवे, जड़ को चैतन्य बना देवे। तो अब परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान सुनाकर, गीत है संगीत है, रोज हमको जो सवेरे हम सुनते हैं, वास्तव में हम जागते संगीत से हैं, गीत से जागते हैं। और अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, ये शब्द आप यहाँ आए हैं तो आपने अमृत वेले ये गीत सुना होगा। उससे पहले मेरे शुरू शुरू में हम जब आए तो एक गीत और बजता था, जाग सजनिया जाग नव युग आया, अब नया युग आ रहा है, अज्ञान की नींद से जाग जाओ। और रात को सोते समय जैसे योग साधना करके छोटों बच्चों को बड़ों को हर एक को योग की विधि तो बताते ही हैं। योग का मंत्र तो ओम शांति है, अपने शांति स्वरूप में प्रभु के गुण गाते हुए सारा दिन जो किया है उसमें देखना है कि कौन सा कार्य कलाहीन था, और कलाएं का मतलब उसकी लाइट बढ़ती जाए। 16 कला संपूर्ण चंद्रमा को कह की बात है, तो चंद्रमा का एक साइकिल चलता है 14 दिन का। तो ये जो बात थी कि हम चलते चलते वो हमारी कलाएं कहाँ चली गई, कलाएं बदल कैसे गई, चंद्रमा तो वही है परंतु वो जो लाइट है वो सूर्य से प्राप्त करने की विधि कैसे बदल गई। हम चैतन्य आत्माओं की, चैतन्य कलाकारों की, हमने परमपिता महात्मा से जो हमारा असली स्वरूप था उसको भूल गए, तो संपूर्ण बनने वाली आत्मा है। तो आत्मा में परमात्मा पहले ज्ञान सुनाकर समझ देकर हर प्रकार से हर एक मनुष्य आत्मा को दिव्य बनाता है, देवता बना रहा है। इसलिए उनका जो उनकी कला जैसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, बाकी कलाएं कोई कॉपी भी हो कंपटीशन भी कर ले रहे विन भी कर ले रहे, परंतु जो परमात्मा की अद्वितीय कला है आत्मा को एकदम सुंदर बना देना, श्याम से सुंदर बना देना। श्री कृष्ण जी की महिमा है श्याम सुंदर, वो सिर्फ फिजिकल बात नहीं है, वास्तव में वो आत्मा की सुंदरता, हर प्रकार की सुंदरता थी और उसमें भी कलाएं सारी दिखाई है। श्री कृष्ण को आकर्षण मूर्ति कहते हैं, कृष्ण आकर्षण करने वाला। किस चीज ने आकर्षण किया गोपियों को? मुरली ने आकर्षित किया। किस चीज को ने आकर्षित किया? डांस ने, रास ने आकर्षित किया। तो परमपिता परमात्मा सिखाते हैं कि अवगुण होते हुए भी राशि को मिलाओ, अपने संस्कारों का मिलन करो। तो जो संस्कारों के मिलन से, जैसे कि संगीत सिर्फ एक एक चीज बज रही है उसका अपना रस है, और अगर संगीत कला का हम प्रकार से सब बातें इकट्ठी हो में, सितार भी बज रही है, ढोलक भी बज रही है, मजीरा भी बज रहा है, तो कीर्तन करते हैं हिसाब से, तो जीवन इतना दिव्य बन जावे। इसीलिए देवताओं की दिव्य रचना का मतलब, जिनके चैतन्य चित्र इतने चरित्र इतना ऊंचा था, उनका चित्र कागज पर भी हो ना, हाथ से उठा के मस्तक पर लगाएंगे, चैतन्य है तो। पर वो ऐसे ही परमपिता परमात्मा कहते हैं, चाहे तुम्हारी वैल्यू 100% से 16 कला से अमावस्या भी हो गई है, परंतु मैं अमावस्या को फिर से पूर्णम बनाना चाहता हूँ, संपूर्ण बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा दिव्य कलाकार जो जड़ को चैतन्य बना देवे, मूल्यहीन को मूल्यवान बना देवे, परम श्रद्धे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना देवे, तो ऐसे परमपिता परमात्मा की आप कला, आप चैतन्य मूर्तियां हैं जिनमें ये सब कलाएं परमात्मा भरने आए हैं। तो मूर्तियां तो आप हैं, पर मैं विश्वास से कहती हूँ यहाँ प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है आपका। वो प्राणों में, आत्मा में, प्राण में, हृदय में, मन बुद्धि तथा संस्कारों में वो कला जब भर जाए, सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उत्तम पुरुष बन जाएंगे। फिर तो पूजनीय मूर्त है, पुजारी बन गए, भिखारी बन गए, क्योंकि भिखारी बन गए थे। तो परमपिता परमात्मा फिर देहाभिमानी से आत्माभिमानी बनाते हैं, आप समान निराकारी बनाते हैं, निर्विकारी बना करके निरअहंकारी बना देते हैं। इसीलिए ठाकुर जी की पूजा होती है, पत्थर सागर की लहरों में लहराते ठाकुर जी बन जाता है। तो संसार में रहते हुए सागर की लहरों में लहराते हुए सब कोने टूट जाते हैं और पूजनीय मूर्त बनाता है, तो पत्थर को ठाकुर जी बनाने वाले, हीरा बनाने वाले, और हमारे सामने तो हीरो बैठे हैं फिल्म के, तो हीरो बनाने वाले बेहद के नाटक। सब कलाकारों को फिर से नमस्कार। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपके दिल की बात हमारे दिल तक पहुंची है। वेस्ट को बेस्ट बनाना और दिव्यता के द्वारा पूजनीय बनना, और आप सभी ने बहुत सुंदर बात सुनी कि आप सबकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली मूर्ति को केवल मूर्ति बने रहना होता है। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप क्या बन जाएंगे वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि त्याग शरीर का होना नए जीवन की बात नहीं है, पर पुराने विचार और संस्कारों का त्याग होना ये भी नए जीवन की निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदेश दीदी जी का। और अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय तृप्ति बहन जी को, जो आपने सुना है उस मार्ग पर हम चलते हैं, परमात्मा से योग लगाएंगे मेडिटेशन के लिए। आप सभी से मेरा ये नम्र अनुरोध है कि आप कृपया कुछ देर के लिए और बैठे रहें, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। और आप सभी बहुत अच्छे सुनने वाले श्रोता, एक बार जोरदार अपने लिए भी तालियां बजाइए। भावनगर गुजरात से आए हुए आदरणीय दीदी को आमंत्रित कर रहे।
ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, दिव्य मानव के रचयिता, सुप्रीम कलाकार, परमपिता परमात्मा एवं डायस पर उपस्थित विशेष, हम ऐसे कहेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्रज्ञा समान हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी एवं मैग्नेटिक पर्सनालिटी की धनी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, अन्य सर्व उपस्थित सम्माननीय मंचस्थ मेहमानों एवं बीके भाई बहने, सभा में उपस्थित सभी कलाकार भाइयों एवं बहने, हमने दिव्य मानव की जो रचना श्रेष्ठ कलाकार ने की वो हमें याद आता है, और कैसी रचना की तो हमें स्वर्ग सतयुग याद आता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ रचना जो अभी भी बात हुई, मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही है, नमन कीर्तन सब कुछ हो रहा है, दर्शन के लिए जाते हैं, तो ऐसी श्रेष्ठ कृति रचने वाला परमात्मा ने ये विधि अपनाई है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति दैवी संस्कृति थी और वो हमारे प्राचीन राजयोग से ही संभव होती है। आप सब भी यहां आए हो, कई प्रकार की ज्ञान की सत्य बातें सुनाते हैं और सत्य स्वरूप में स्थित करते हैं। कईयों ने दिव्य मानव बनाने के प्रयत्न भी किए, धर्म स्थापक आए, महात्माएं आए, दुनिया कुछ बची या थम गई, थमाने का इन्होंने कार्य जरूर किया। फिर भी आज देखते हैं कि साइंस बहुत आगे है और वो यंत्र मानव बना सकता है, लेकिन महामानव या दिव्य मानव नहीं बना सकते, वो हम सब जानते हैं। करोड़ों के खर्चों से उपग्रह छोड़ सकता है, लेकिन पूर्वग्रह नहीं छुड़ा सकता है, ऐसी लिमिट है। तो वहां से हमारी आध्यात्मिक या योग की बातें शुरू होती है। अभी हम कुछ क्षणों के लिए अपने स्थानों पर व्यवस्थित बैठ जाएं, अलर्ट होकर के बैठेंगे, नेचुरल मुद्रा में बैठेंगे। आपके आसपास के वातावरण को महसूस करें। बाह्य वातावरण में कई दर्शनीय चीजें भी है, आपके साथ अनेक अन्य भाई बहने भी बैठे हैं, फिर भी मेरा स्वयं का एक अलग अस्तित्व भी है। स्वयं की ओर अटेंशन दे। शरीर मकान के समान है, मैं मालिक हूं। शरीर रथ है, मैं रथी हूं। कर्मेंद्रियां प्रजा है, मैं राजा हूं। मन की सोच द्वारा अपने भीतर में जाए, ऐसे स्थान पर पहुंचे, दो नेत्रों के पीछे, ब्रकटी के मध्य में, जहां केवल मेरी ही सोच है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। यह मेरा व्यक्तिगत स्थान है, यही मेरा संसार है। जितना मैं इस स्थान पर स्वयं को केंद्रित करती हूं, उतना इस स्थान का प्रकाश बढ़ रहा है। इस प्रकाश में मैं स्वयं को देखती हूं, अति सूक्ष्म ज्योति प्रकाश बिंदु चमकते सितारे को। इस प्रकाश का स्रोत भी यही बिंदु है, जो चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है। मैं शांत स्वरूप हूं। मुझे आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शुद्ध हूं। मैं शक्ति हूं। प्रेम हूं। आनंद हूं। बड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है। अब मैं चैतन्य ज्योति प्रकाश बिंदु परम धाम की ओर उड़ रहा हूं। बहुत दूर, बहुत दूर सूर्य चांद सितारों से पार, जहां लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, इस प्रकाश में बहुत ही तेजस्वी अपनी आभा को चारों तरफ फैलाते हुए परमात्मा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसके समीप हूं, दिल चाहता है इसे देखता ही रहूं। दिव्य प्यार की असंख्य बूंदे मुझ आत्मा पर बरस रही है। मुझे आत्मा के मैल को धो रही है। मैं शुद्ध वात्सल्य से भरपूर हूं। अति शांति की लहरों में मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। शीतल लहरें मुझे गहरी शांति की अनुभूति में ले जा रही है। बेहद शांति, नीरव शांति में मैं खो गई हूं। ऐसे परमात्म प्यार जो दिव्य है, शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्ति सर्व गुणों से मैं संपन्न हो रही हूं। परमात्मा का दिव्य तेज मुझे धन्य धन्यता का अनुभव करा रहा है। सभी खजानों को भरकर मैं वापस अपने साकार वतन में, इस साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजमान हूं। शरीर के रोम रोम से ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य गुण चारों ओर फैल रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तृप्ति दीदी जी। आपने बहुत सुंदर हमें योग का अनुभव कराया और अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भ्राता मोहित भाई जी हिमांशु नवरंग आर्ट की ओर से एक तो गीतों की एल्बम का उद्घाटन हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी और सुदेश दीदी जी की ओर से हो रहा है। एक नई एल्बम बनी है गीतों की तो उसका उद्घाटन एक बहुत सुंदर सरप्राइज है आप सभी के लिए। आप बैठे रहिएगा क्योंकि अभी केक कटिंग होने वाला है तो आप ऐसे मत जाइएगा। और नेपाल की सोनी बहन हमारे बीच में आ रही हैं जितना ऊंचा एल्बम के उद्घाटन पाल से सुनी बहन जुड़ी रही और हिमांशु आर्ट से भी तैयार रहे भाई जीवन में तुम कृपया केक की तैयारी भी जल्दी से करेंगे। जीवन में तुम जितना ऊंचा हम सभी की उपस्थिति में गीतों की एल्बम का उद्घाटन हमारी परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी सुदेश दीदी जी और सभी वरिष्ठ जनों के बीच में हो रहा है। हम सभी जोरदार तालियों के साथ इसको सब सम्मान स्वीकार करते हैं। आप जरूर सुनिएगा साथ ही हिमांशु आर्ट की ओर से भी बाबा के चित्र से आदरणीय सुदेश दीदी जी को देंगे वो भी आगे आएंगे। ये जो गीत बज रहा है इसी एल्बम का है और सोनी बहन ने गाया है हमारी। सोनी बहन एक बार हाथ हिला दीजिए आगे आप। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मोहित भाई आ रहे हैं हिमांशु आर्ट की तरफ से एक सुंदर बाबा का चित्र आपने बनाया है ये आपकी आर्ट है। आदरणीय सुदेश दीदी जी को भेंट दे रहे हैं आदरणीय चंद्रिका दीदी जी और मोहित भाई जी मिलकर के। और हमारे अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता दयाल भाई जी को जो हम सभी के बहुत प्रिय हैं आदरणीय हैं और हमारी आर्ट एंड कल्चर विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। आपने अपने हड्डी सेवा इस विंग की आपने की है। आज आपका जन्मदिन है तो हम सभी को बहुत खुशी है इस बात की और आपकी चेहरे से आपकी उम्र का पता भी नहीं चलता है अगर ये अपने आप ना बताए तो। तो बहुत ही सहज अति निर्माणचित हमारे वरिष्ठ भ्राता जी दयाल भाई जी का जन्मदिन है।
बधाई हो बधाइया शुभ दिन की बधाइया जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया शुभ दिन की बधाइया जन्म दिवस है तुम्हारा।
आपने 80 साल कंप्लीट किए हैं।
रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां।
और
कुंदा बहन ऊपर आ जाएंगी, कुंदा बहन जहाँ कहीं भी हैं। नरेंद्र भाई आप भी आ जाइए, साथ ही रहो, आप आ जाइए। सब जोरदार तालियों के साथ अपना अपनी खूब सारी दिल की शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देंगे। 80 साल में से जीरो हटा लीजिए, अभी तो आपको बहुत आगे जीना है।
होता है एक दिन सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you.
बेटी भी यहाँ पर आई हुई है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा तो खुशी में झूम सकते हैं सभी जो भी खड़े हुए हैं।
रंग लाए मेरी मन्नते,
अंजलि बहन, मोनिका बहन, थोड़ा सा झूम दीजिए।
सभी हसरते सारे जहाँ की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी।
कुमारी भी आ रही है हमारे बीच में, कुमारी अनन्या बर्थडे सॉन्ग लेकर के।
बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है।
कुमारी अनन्या आ जाइए आप।
ओहो
कुमारी अनन्या हमारे बीच में आ रही है शुभ दिन के उपलक्ष में, बहुत सुंदर नृत्य लेकर के।
तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले,
फूल है वो जो सदा ही खिले।
देख के तुमको दिल ही दिल में आज सभी हर्षाए, 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं।
Wish you happy birthday and wish you divine power. You are God's voice and you are God's heart
and you are God's heart.
अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम हम सब के लिए। दरिया का मोती हो, हम सबके नयन की ज्योति हो। अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम हम सबके लिए। दिल के दरिया का मोती हो, हम सबके नयन की ज्योति हो,
सबके नयन की ज्योति हो।
झूम रही है देख दे
देख के तुमको चाहूं दिशाए, 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआए। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। सदा भगवान रहे, महफूज रहे तेरी सांसें, है तेरे लिए यही अरदासें। तेरी कायम ये मुस्कान रहे, तेरे साथ सदा भगवान रहे, महफूज रहे तेरी सांसें, है तेरे लिए यही अरदासें,
तेरे लिए यही अरदासें।
रोज तेरे कदमों को छुए दुनिया की शुद्ध हवाएं, 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं।
मुस्कान ऊपर आएंगे
की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं।
मुस्कान आवाज सुन रही है तो मयाल भाई बुला रहे हैं आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी अनन्या और सभी का, जिन्होंने अपनी खुशी का, अपने अपनी दुआओं का बहुत सुंदर साथ इस गीत के ऊपर दिया। आदरणीय सुदेश दीदी जी कुछ ब्लेसिंग देने आ रहे हैं।
ओम शांति, ओम आनंद, हैप्पी बर्थडे। परंतु यह विशेष बर्थडे 80th बर्थडे है। या तो 800 हमेशा अपने को समझे, मैं 0 बिंदु आत्मा हूँ, तो हीरो 0 सो हीरो, और अष्ट 8 है अष्ट रतन में आने वाले अष्ट रतन, और परमात्मा भी 0 हम भी 0, तो आपका मिलन प्रभु मिलन से, तो ऊपर करो नीचे करो इक्वल, तो पूरा परमात्मा को फॉलो करने वाले, उनकी श्रीमत पर चलने वाले, ऐसे दयाल भाई जैसे परमात्मा दयालु कृपालु है, कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बाबा के बच्चे को, और खास करके ये कार्यक्रम करने की उत्साह उमंग वाले कला के निमित्त, इसलिए आपको बहुत 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 बधाई हो 16 कला संपूर्ण बनने के। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच। अभी कार्यक्रम समाप्त हो गया है, मुझे लगता है आपको भूख लगी कि नहीं, आप लोग बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच, भोजन पे जाइए, लेकिन शाम का प्रोग्राम मिस नहीं करना।
अभी हमारे माननीय जो वरिष्ठ अतिथि हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा, कुछ चंद क्षण ही और बाकी हैं, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता सतीश भाई जी को, जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के। और आपसे एक बहुत नम्र निवेदन रहेगा, इसके बैक साइड में, हॉल के बैक साइड में एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन हिमांशु आर्ट की तरफ से लगी है, और उसको बहुत मेहनत से बनाया और लगाया गया है, आप जरूर स्वयं भी देखें और दूसरों को भी आप उनको कहें कि वो भी जरूर देख करके जाएं। और अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए भ्राता सतीश भाई जी। आदरणीय सुदेश दीदी जी सम्मानित कर रहे हैं शॉल पहनाकर डॉक्टर नीरजा जी को, भ्राता राजेश जी को, भ्राता धर्मेंद्र भाई जी को। आप सभी इस प्रांगण में आए, हमें बहुत खुशी है, और सब अपना घर समझ के आते रहिएगा, और सेवाएं करते भी रहिए, सेवाएं देते भी रहिए, दुआएं लेते भी रहिए, दुआएं देते भी रहिए। बहुत बहुत थैंक यू। अभी सतीश भाई जी।
ओम शांति। एक बार सभी कहें ओम शांति, ओम शांति। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें सबका। मैं लगे हाथों अपने आदरणीय दयाल भाई जी के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जन्मदिन आता रहे, जन्मदिन आता रहे। आपका साल दर साल दो चार जन्मदिन ले आए, आने वाला हर साल दो चार जन्मदिन ले आए, आने वाला हर साल। आप अपना भी ख्याल रखें और सबका रखें ख्याल। दयाल भाई आप पर दीन दयाल, यूं ही हरदम रहे दयाल, यूं ही हरदम रहे दयाल, यूं ही हरदम रहे दयाल। बहुत अच्छा सेशन में सभी सुधी जनों का, वक्ताओं का, श्रोताओं का, दर्शकों का, और आज के आयोजन पर जिन सभी ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति भी दी, अपने वक्तव्य दिए, विचार दिए, और जो दिव्य मानव बनाने के लिए जो सबने संकल्पनाएं दी, दीदियों ने आशीर्वाद दिया, उन सब के लिए हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर लें कम समय में। आभार का ये भार, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे, कागज की कश्ती सिंधु पार हो न सकेंगे, पत्तों के बाद से पहाड़ तोलूं तो कैसे, पर कर्तव्य भार से निर्भर हो न सकेंगे, कर्तव्य भार से निर्भर हो न सकेंगे। बीच बीच में आप तालियां बजाते रहें जी। परम कलाकार ने आप सबको यहाँ बुलाया, परम कलाकार ने आपको यहाँ बुलाया, पुकारा प्रभु का निमंत्रण प्रेम से आपने भी स्वीकारा, अवसर ये धन्यवाद का हम खो न सकेंगे, पर कर्तव्य भार से निर्भर हो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे। हर एक ने इस सत्र को संवारा है सजाया, मत पूछो प्यार अनुभव हम पे कितना लुटाया, पर शब्दों के मोती माला में पिरो न सकेंगे, आभार का ये भार सहज ढो न सकेंगे। हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी ने स्वागत सुमन सब पे लुटाया, तहे दिल से दिल की बात दिल तक पहुंचाया, शुभकामना में प्रेम दीदी ने कहा आज का क्या दौर, दानों की संस्कृति से चले हम देव संस्कृति की ओर, देव संस्कृति की ओर। हमारी मोनिका बहन ने सुनाया शुभ भावना का जादू, और उनका अनुभव सुन करके दिल पर रहा न काबू, हम सबके दिल पर रहा न काबू। हमारी आदरणीय परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी ने आत्म अनुभव कराया, मानव को दिव्य मानव बनने का मर्म सुनाया, हम सबको दिव्य मानव बनने के लिए शपथ भी दिलाया, हम सबका भी दिल धन्यवाद उनके लिए गाया, बार बार धन्यवाद गाया। मनमोहक नृत्य से भाव मुद्रा कह न सकेंगे, कर्तव्य भार से निर्भर हो न सकेंगे। उद्घाटक संबोधन में बहन नीरजा जी ने सुनाया कला का महत्व, बड़े ही कलात्मक ढंग से बताया, शांति कला का मूल उद्देश्य बताया, दृष्टांतों में स्वर्णिम संस्कृति का संसार दिखाया, स्वर्णिम संस्कृति का संसार दिखाया। भ्राता राजेश जयेश जी ने जो ऊर्जा अनुभूति की, सोच विचार का आधार ऐसी अभिव्यक्ति दी। भ्राता धर्मेंद्र जी ने कहा भौतिकता हावी यू हुई, साहित्य अध्यात्म दिव्यता समाप्त सी हुई, ज्ञान सरोवर में आने का आपने अनुभव जो किया उसके लिए विभूतियों को आपने आभार भी किया, उसके लिए विभूतियों का आपने आभार भी किया। आशीर्वचन में दीदी जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, कलाकारों ने हृदय से धन्यवाद दिया है अपनी दीदी का, हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुदेश दीदी जी का। प्राण प्रतिष्ठा पाके मूर्ति पूजनीय बन जाती, वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, आपने परम कलाकार की आप सदा ही गुण गाती। तृप्ति दीदी ने मन की तार प्रभु से जुटाई, योगा दिवस से पूर्व हमसे योग की अनुभूति कराई, परमात्मा अनुभूति कराकर आपने अपने आप से मिलाया, और परमात्मा अनुभूति करा के परमात्मा प्यारे कलाकार से मिलाया। मधुर वाणी ने मधुर वाणी में दिया मधुर संदेश, आइए स्वागत है बदलें। हम आज विश्व का परिवेश, रचना बहन ने कमाल का मंच संचालन किया, जोरदार तालियों से कहे दिल शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। सभी दर्शकों श्रोताओं सुधी जनों का हृदय से धन्यवाद। आप सबका मेरा रोम रोम कर रहा आभार आभार और आभार 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 और आभार, धन्यवाद।
आभार करने वालों का भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक मिनट के लिए परमात्मा की स्मृति के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। शाम को 5 बजे आपका सेशन है और रात को बहुत सुंदर संगीत संध्या है, उसमें आप जरूर उपस्थित रहिए और सभी को बता भी दीजिए। गाइड भाई बहनों के लिए एक बहुत विशेष सूचना है, आर्ट एंड कल्चर विंग में आए हुए सभी गाइड भाई बहनों के लिए हॉल नंबर 8 ट्रेनिंग सेंटर में आज ही अभी 2:15 बजे मीटिंग रखी गई है, तो आप सभी 2:15 तक वहां पर जरूर पहुंचे, गाइड जो भी गाइड भाई बहने आए हुए हैं। ओम शांति। अभी एक मिनट साइलेंस के साथ हम इसको यहीं पर ही संपन्न कर रहे हैं।